अध्याय एक, एक खलनायक संत के रूप में पुनर्जन्म मैं बस सपाट लेटने जा रहा हूँ। मैं देहांतरित हो गया हूँ और एक जुवान हुआन उपन्यास में खलनायक बन जाऊं, या बादलों के स्वर पवित्र भूमि के संत। फोन चेन पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, दूर के पहाड़ों को देख रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था। अभी अभी वह एक जुवान हुआन उपन्यास में स्थानांतरित हो गया और खलनायक संत बन गया। चूंकि यह उपन्यास बहुत नाटकीय था, इसलिए फैन चेन को कथानक स्पष्ट रूप से याद था। विशेष रूप से खलनायक संत एक अत्यंत मजबूत पृष्ठभूमि और स्वर्ग विरोधी प्रतिभा के साथ, वह निश्चित रूप से जुवान हुआन दुनिया का अमीर, सुंदर और शक्तिशाली व्यक्ति था, फिर भी वह एक मूर्ख बन गया। उसने अपनी छोटी बहन लिन लोवेई के लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन उसने कोई सराहना नहीं की, बल्कि इस संत से बहुत घृणा महसूस की। अंततः, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक नकल की थी, इसलिए मुख्य पुरुष पात्र ने हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। ये संत फोन चेन थे। दाओकाया के स्वामी और पवित्र भूमि के संत होने के बावजूद वह एक साधारण व्यक्ति क्यों बनना चाहेगा? फैन चेन अवाक रह गया। उपन्यास में नायिका लिन लोवेई के परिवार का नरसंहार किया गया था और फोन चेन वहां से गुजरा और उसे बचाया। न केवल उसने उसे धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि उसे ये भी संदेह था कि वह वही था जिसने उसके परिवार का नरसंहार किया था और बदला लेने के लिए लगातार फैन चेन को मारना चाहता था। जब तक फोन चेन की हत्या नहीं हो गई, तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि फोन चेन उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि पुरुष प्रधान जियाओ युनटिंग का पिता था। सबसे नाटकीय हिस्सा यह था कि जब नायिका को पता चला कि जियो युनटिंग के पिता उसके दुश्मन हैं, तब भी वह नायिका के साथ ही रही। क्या ये बुद्धिहीनता नहीं है? मुझे इस लिन लोवेई से दूरी बनाए रखनी होगी, फैन चेन ने मन ही मन अपने मन में एक निर्णय लिया। वह स्वाभाविक रूप से एक सरल व्यक्ति नहीं होगा। क्लाउड हेवन होली लैंड के संत के रूप में एक दाओकाया और स्वर्ग विरोधी प्रतिभा से युक्त होने के नाते वह दाओ का अनुसरण करने के बजाय सरलता से क्यों कार्य करेगा? जहां तक पुरुष प्रधान जियो युनटिंग और महिला प्रधान लिन लोवेई की बात है, आप दोनों खेलने जा सकते हैं। अब से हर चीज का फैन चेन से कोई लेना देना नहीं है। तभी उसके मन में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग, लाइफलेस सिस्टम प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। जब तक आप सीधे लेटे रहेंगे, आपको पुरस्कार मिलेंगे, और यदि आप कुछ दिनों तक सीधे लेटे रहेंगे, तो आपको अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलेंगे। फैंग चेन, वह अवाक रह गया। अभी वह दाओ का पीछा करने के लिए दृढ़ था, एक दिन सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने और सम्राट बनने की उम्मीद कर रहा था। अब आप मुझे सीधा लेटने को कह रहे हैं? डिंग, मेजबान का लेटना शुरू हो गया है। अगर तुम कल तक डटे रहे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। सिस्टम, तुम्हारी उपस्थिति ने मुझे चौंका दिया। मैं तो बस एक मेहनती इंसान बनने की तैयारी कर रहा था और तुमने मुझे सीधे लिटा दिया। फैन चेन ने दिल टूटते हुए आह भरी। डिंग, अगर मेजबान को सीधा लेटने से बहुत तकलीफ हो रही है, तो सिस्टम को एक मेहनती सिस्टम से बदला जा सकता है। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, आपको इनाम मिल सकता है। क्या मेजबान इसे बदलना चाहेंगे? फोन चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। क्या मजाक, जब उन्हें लेटकर भी पुरस्कार मिल सकता है तो कौन कड़ी मेहनत करना पसंद करेगा? तभी फैन चेन को एक परिचित आभा का आभास हुआ। केवल उनके गुरु और कनिष्ठ बहन लिन लोवेई ही स्वतंत्र रूप से संत शिखर में प्रवेश कर सकते थे। अगले ही पल एक स्वर्गीय अमर जैसी आकृति फैन चेन के सामने प्रकट हुई। लिन लोवेई अत्यंत सुंदर थी, उसके सफेद वस्त्र लहरा रहे थे मानो कोई स्वर्गीय अमर हो, और उसका स्वभाव अद्वितीय था। ये जूनियर सिस्टर बुद्धिहीन होने के अलावा अन्य पहलुओं में भी उत्कृष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय वह मुझे इतना आकर्षित करती थी। फैन चेन की आंखें चमक उठी, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन ऊपरी तौर पर वह मुस्कुराया और बोला, जूनियर बहन, क्या आपको कुछ चाहिए? लिन लोवेई, जो बोलने ही वाले थे, ठिठक गए। जरा ठहरिए, वह आवाज क्या थी? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फैन चेन ने उसे बुद्धिहीन कहा। उसे पहले से ही फैन चेन के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, और उसके आंतरिक विचारों को सुनने के बाद लिन लोवेई की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। फैन चेन, कृपया मुझे अब उपहार न भेजें, मैं आपसे विनती करता हूँ, लिन लोवेई ने उदास चेहरे के साथ कहा। वह हमेशा से यही मानती रही कि फैन चेन ही उसके पिता का हत्यारा है, इसलिए उसने कभी भी उसे अच्छा चेहरा नहीं दिखाया। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में प्रवेश करने के बाद लिन लोवेई लगन से साधना कर रही थी और उम्मीद कर रही थी कि एक दिन वह व्यक्तिगत रूप से अपने दुश्मन को मार डालेगी और अपने परिवार का बदला लेगी। इससे पहले कि उसकी ताकत फैन चेन से आगे निकल जाए, उसका उसके साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन फैन चेन एक मूर्ख था जो लगातार उसके आसपास मंडराता रहता था, जिससे वह बहुत परेशान थी। फैन चेन दंग रह गया। फिर उसे याद आया कि उसने वास्तव में कुछ समय पहले लिन लोवेई को कुछ उपहार दिए थे। पवित्र आत्मा का फल, खेती में सुधार के लिए इससे बहुत लाभ था और यह अत्यंत दुर्लभ था। पिछले फैन चेन ने भी इसे बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया था, फिर इसे सीधे लिन लोवेई को भेज दिया। चूंकि जूनियर बहन को ये पसंद नहीं है, कृपया पवित्र आत्मा फल लौटा दीजिए, फोंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले वाला भोला भाला फैंग चेन नहीं था और वह लिन लोवेई को बर्दाश्त नहीं करता था। इसके अलावा पवित्र आत्मा का फल एक अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना था जो उसके लिए भी बहुत लाभदायक होगा। लिन लोवेई यह सुनकर दंग रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन इस तरह की प्रतिक्रिया देगा। अगले ही पल उसने फैंग चेन के आंतरिक विचारों को फिर से सुना। अगर वो ये न चाहे तो ही अच्छा है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं इस नासमझ औरत के प्यार में कैसे पड़ गया। मुझे उसे उस समय बचाना नहीं चाहिए था। वह न सिर्फ कृतघ्न थी बल्कि उसने मुझे मारने के लिए जियाओ युनटिंग के साथ मिलकर काम भी किया था। वह बाकी सभी मामलों में तो बेहतरीन है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। ये जानने के बाद कि उसके लिन परिवार को जियो युनटिंग के पिता ने बर्बाद कर दिया है, उसने बदला लेने की कोशिश नहीं की बल्कि जियो युनटिंग ने उसे धोखे से साथ रहने के लिए मजबूर भी किया। फैंग चेन ने मन ही मन शिकायत की। वास्तव में इस महिला मुख्य पात्र फोंग चेन के बारे में उनकी कोई अच्छी धारणा नहीं थी, न केवल बाद के कथानक के कारण बल्कि इसलिए भी कि इस महिला के मस्तिष्क में वास्तव में कोई समस्या थी। यह शापित फैंग चेन, वह वास्तव में अपने दिल में मुझे बुद्धिहीन कह रहा है। तो मैं उसके दिल में ऐसी हूँ। लिन लोवेई की भावनाएं बहुत जटिल थीं। हालांकि वह पहले फैंग चेन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि फैंग चेन एक बहुत ही उत्तम व्यक्ति था। उनकी साधना प्रतिभा, पृष्ठभूमि और उपस्थिति सभी त्रुटिहीन थे, और फैंग चेन भी सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करता था। अब पहली बार फैंग चेन के आंतरिक विचारों को सुनने में सक्षम होने से उसे बहुत अवास्तविक महसूस हुआ। लेकिन यह जियाओ युनटिंग कौन है जिसका उसने उल्लेख किया? इसके अलावा जिस दुश्मन ने हमारे लिन परिवार को नष्ट किया वह नहीं था बल्कि जियो युनटिंग का पिता था। ये कैसे संभव है? मैंने उस समय केवल फोंग चेन को देखा था, किसी और को नहीं। लिन लोवेई अत्यंत दृढ़ इच्छा शक्ति वाली व्यक्ति थी और वह सिर्फ इसलिए अपना मन नहीं बदलेगी क्योंकि उसने फैंग चेन के आंतरिक विचार सुन लिए थे। उसे सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वह फोंग चेन के आंतरिक विचारों को सुन सकती थी। जो कुछ भी आपने मुझे पहले दिया था वह सब यहाँ है, मैं वह सब आपको लौटा रहा हूँ। अब से मुझे आशा है कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। लिन लोवेई ने सीधे एक स्थानिक अंगूठी फेंक दी जिसमें फैंग चेन द्वारा दिए गए सभी उपहार थे। और वह जियाओ युनटिंग कौन है? लिन लोवेई ने फैंग चेन को देखा और गहरी आवाज में पूछा। वह इस जियो युनटिंग के बारे में बहुत परवाह करती थी क्योंकि फैंग चेन के विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह भविष्य में इसी व्यक्ति के साथ होगी। फैंग चेन ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे स्थानिक अंगूठी को स्वीकार कर लिया। जूनियर बहन, मेरे सेंट पीक टोकन के बारे में क्या? जहां तक इस जियाओ युनटिंग की बात है मैं उसे भी नहीं जानता, फैंग चेन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। हालांकि जब उन्होंने जियाओ युनटिंग का नाम सुना तो उनके चेहरे पर संदेह और आश्चर्य का भाव दिखाई दिया, लेकिन ये जल्द ही गायब हो गया। लिन लोवेई ने इन सभी को पकड़ लिया। यह आदमी सचमुच दोमुहा है। हम्फ, लिन लोवेई ने अपने दिल में ठंडी सांस ली। ये फैंग चेन अभी भी अनभिज्ञ होने का नाटक कर रहा था। ये रहा आपका टोकन। लिन लोवेई ने सीधे इसे बाहर निकाला और फैंग चेन को फेंक दिया। वह फोंग चेन से संबंधित कुछ भी नहीं चाहती थी। आज इसे फोंग चेन को वापस कर पाना स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट था। अध्याय 2, फैंग चेन सपाट हो जाता है। लिन लोवेई स्थिर नहीं बैठ सकता। वह जियाओ युनटिंग के बारे में क्यों पूछ रही है? क्या वह कुछ दिनों बाद पहली बार जियाओ युनटिंग से नहीं मिली थी? इस बुद्धिहीन महिला ने कभी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि यह मुठभेड़ जियो युनटिंग द्वारा सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध थी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि जियाओ युनटिंग को कैसे पता चला कि लिन लोवेई प्रशिक्षण के लिए क्लाउड मिस्ट माउंटेन जा रही है, और उसने जानबूझकर एक जंगली ज्वार पैदा कर दिया जिससे ये नासमझ औरत मुश्किल में पड़ गई। फिर जियाओ युनटिंग उस सुंदरी को बचाने के लिए प्रकट हुआ और उसी समय घायल भी हो गया, जिससे लिन लोवेई के मन में उसके लिए मन ही मन भावनाएं पैदा हो गईं। यह महिला कभी नहीं जान पाएगी कि जियो युनटिंग का वीरतापूर्ण बचाव उसकी योजना का एक हिस्सा मात्र था। लेकिन अगर वह ये सब जानती भी तो भी यह बेकार होता। ये बुद्धिहीन महिला वैसे भी जियाओ युनटिंग को माफ कर देती। यदि वह अपने कुल के विनाश का बदला लेने से बच सकती है तो इसमें थोड़ा सा धोखा क्या है? फैंग चेन के आंतरिक विचारों को सुनने के बाद लिन लोवेई ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। अगर उसकी ताकत इजाजत देती तो वह सचमुच उसे थप्पड़ मारकर मार डालना चाहती थी। फैंग चेन द्वारा बार बार दिमागहीन शब्द का प्रयोग करने से लिन लोवेई क्रोधित हो गए। क्या मैं उस तरह की भारी भरकम और बुद्धिहीन महिला हूँ? क्या मैं इतनी सरल योजना को नहीं समझ सकता? लिन लोवेई की छाती लगातार धड़क रही थी, स्पष्ट रूप से फैंग चेन से नाराज थी। फैंग चेन की बातें सच थीं या झूठ, इसकी पुष्टि अभी बाकी थी, इसलिए वह अभी उसके साथ अपना मुखौटा नहीं उतारेगी। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, लिन लोवेई ने कठोर भाव से कहा। ठीक है, अगर जूनियर सिस्टर लिन के पास और कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें बाहर नहीं छोड़ूंगी, फैंग चेन ने गहरी आवाज में कहा। इसके अलावा कृपया भविष्य में लोगों को सीधे उनके नाम से न बुलाएं, ये बहुत अशिष्टता होगी। शुरू में उसे लिन लोवेई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उसे सीधे खारिज कर दिया। कोई बात नहीं, लिन लोवेई का पूरा शरीर कांप उठा, उसने गहरी सांस ली, फैंग चेन को गहराई से देखा और फिर सेंट सोन पीक छोड़ दिया। चूंकि फैंग चेन ने निष्कासन आदेश जारी कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह वहां नहीं रुकेगी। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से फैंग चेन की घृणा और उसके प्रति उसकी दूरी की भावना को महसूस कर सकती थी। फैंग चेन बदल गया था, वह फैंग चेन नहीं था जो उसके इर्द गिर्द घूमता था। यदि यह पहले होता तो लिन लोवेई निश्चित रूप से खुश होते, क्योंकि वह वास्तव में फैंग चेन को देखना नहीं चाहती थी। लेकिन अब उसे कुछ खोया हुआ सा महसूस हुआ, जैसे कोई कीमती चीज खो गई हो। अंततः वह चली गई। लिन लोवेई को जाते देख फैंग चेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। फैंग चेन की राय में लिन लोवेई न केवल मस्तिष्क क्षतिग्रस्त था, बल्कि उसके लिए बुरी किस्मत भी लेकर आया था। इसके अलावा चूंकि वह मुख्य महिला थी, यदि वह उसके साथ शामिल हो जाता तो उसके लिए चुपचाप पड़े रहना और कुछ न करना कठिन होता। लेकिन एक सवाल है, उसे जियाओ युनटिंग के बारे में कैसे पता चला? फैंग चेन गहरी सोच में पड़ गया। सामान्य परिस्थितियों में लिन लोवेई को इस समय जियो युनटिंग को नहीं जानना चाहिए था। ये जियो युनटिंग ही था जो लिन लोवेई को जानता था। एक बार वह लिन लोवेई से मिले और उनकी सुंदरता देखकर दंग रह गए, पहली नजर में ही उनसे प्यार हो गया। उसके बाद जियो युनटिंग ने लिन लोवेई को जीतने का संकल्प लिया, इसलिए उसने कुछ दिनों बाद वीरतापूर्ण बचाव की योजना बनाई। लिन लोवेई का दाव साथी बनने के लिए स्वाभाविक रूप से सभी पहलुओं में उत्कृष्ट होना आवश्यक है। संयोगवश जियो युनटिंग को नायक प्रभामंडल का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे उसके लिए शक्तिशाली न बनना मुश्किल हो गया। जियो युनटिंग की प्रतिभा को देखने के बाद लिन लोवेई ने भी अपना दिल खोल दिया। सिस्टम, अगर मैं जियो युनटिंग के खिलाफ कोई कदम उठाता हूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब और नहीं झुकूंगा? फैंग चेन ने पूछा। दरअसल वह जियाओ युनटिंग से बहुत नाराज था, दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए कि यह नायक अन्य उपन्यासों के नायकों से अलग था। ये व्यक्ति स्वार्थी था और निजी लाभ के लिए कुछ भी त्याग सकता था। उदाहरण के लिए, एक दिव्य तेज हथियार को परिष्कृत करने के लिए उसने इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए जीवित मानव बलि का इस्तेमाल किया, अनगिनत लोगों का नरसंहार किया और फिर फैंग चेन को फंसाया। इसके परिणामस्वरूप फैंग चेन सड़क पार करने वाला चूहा बन गया और हर कोई उसे मारने के लिए चिल्ला रहा था। जियाओ युनटिंग ने ऐसी बातें कभी कभार ही नहीं की, ये कहा जा सकता है कि ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वह धोखा न दे। ऐसा व्यक्ति खलनायक जैसा दिखता था, हालांकि जियाओ युनटिंग नायक था और फैंग चेन खलनायक था। इसके बजाय इस परंपरागत शैली ने अद्वितीय रुचि वाले प्रशंसकों के एक समूह को आकर्षित किया। अगर वह कर सकता तो फैंग चेन वास्तव में इस जियो युनटिंग को मारना चाहता था। इस बारे में सोचें तो उनके पास सपाट लेटने की प्रणाली थी, यदि वह ऐसा करते तो क्या इसे कथानक में हस्तक्षेप माना जाता? यदि मेजबान जियो युनटिंग के विरुद्ध कोई चाल चलता है तो इसे फ्लैट बिछाने की समाप्ति माना जाएगा और कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं होगा। फैंग चेन के दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। उसे तुरंत समझ आ गया कि सिस्टम पुरस्कार पाने के लिए उसे सब कुछ अनदेखा करना होगा। यदि वह पुरस्कार नहीं चाहता था तो वह जियो युनटिंग के खिलाफ कदम उठा सकता था। वैसे भी यह जियाओ युनटिंग ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर सकता, मैं बाद में कार्रवाई करने का अवसर ढूंढ लूंगा। दूसरा पक्ष नायक है, जिसे भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए वह आसानी से नहीं मरेगा। अगर मैं उस पर हमला करता हूं तो इससे उसे एक मौका मिल सकता है। नायक आमतौर पर बहुत भाग्यशाली होते हैं, जब तक वे मरते नहीं हैं वे और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं, जब तक कि उन्हें एक ही झटके में मारना दिया जाए। अब जियो युनटिंग का भाग्य अपने चरम पर था, अब उस पर हमला करने से जरूरी नहीं कि उसकी मौत हो जाए। आखिरकार जियो युनटिंग की अंगूठी में बूढ़ा आदमी सरल नहीं था। वह एक समय ऋषि थे और अंतरिक्ष संबंधी गुप्त तकनीकों में कुशल थे। अगर वह जाना चाहता तो इस दुनिया में बहुत कम लोग उसे रोक सकते थे। चूंकि यही स्थिति है, इसलिए मैं सपाट लेटा रहूंगा। मैं नायक को उकसाऊंगा नहीं, और नायक इतना दिमागी तौर पर मृत नहीं होगा कि मुझे मार डाले, है ना? चूंकि वह सिस्टम पुरस्कार पाने के लिए लेटना जारी रखने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसने अन्य चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। फैंग चेन, तुम बहुत आगे चले गए हो। लौटने के बाद लिन लोवेई अब अपने दिल में भावनाओं को दबा नहीं सकी और तुरंत फूट पड़ी। फैंग चेन के आंतरिक विचारों ने लिन लोवेई को भारी झटका दिया था। अंततः उसे इस आदमी का असली रंग पहचान लिया, साथ ही उसे कुछ अज्ञात रहस्य भी पता चले। हालांकि इन रहस्यों की पुष्टि की आवश्यकता थी। फैंग चेन को कैसे पता चला कि मैं कुछ दिनों में प्रशिक्षण के लिए क्लाउड मिस्ट माउंटेन जा रहा था, और यह भी कि मैं जियो युनटिंग से मिलूंगा? या क्या ये सब फैंग चेन की योजनाएं हैं? लिन लुओवेई शांत हो गई और उसने अपने मन में जो विचार सुने थे उन पर विचार किया। ये फैंग चेन कपटी और चालाक है, ये बहुत संभव है कि वह जानता हो कि मैं जानता हूं कि उसने हमारे लिन परिवार को नष्ट कर दिया है। अगर वह जानता है तो वह मुझ पर सीधे हमला क्यों नहीं करता? या क्या वह इसका उपयोग ये करने के लिए करना चाहता है कि मैं अपनी सतर्कता छोड़ दूं और उसे एक नए नजरिए से देखूं? ये सोचकर लिन लुओवेई को अचानक कई बातें समझ में आ गईं। उसे लगा कि यह फैंग चेन की योजना थी, यहां तक कि वे आंतरिक विचार भी जानबूझकर थे। हालांकि मुझे अभी भी उस जियाओ यूनटिंग से मिलना है जिसका इस आदमी ने उल्लेख किया था। इस तरह मैं फैंग चेन के शब्दों को भी सत्यापित कर सकता हूँ। उसी समय मुझे ये पता लगाना होगा कि क्या जियो यूनटिंग के पिता ही अपराधी हैं जिन्होंने हमारे लिन परिवार को नष्ट कर दिया। लिन लुओवेई ने गहरी सांस ली और उसने अपना मन बना लिया था। चाहे कुछ भी हो, उसे कुछ ही दिनों में क्लाउड मिस्ट माउंटेन जाना था। अगर फैंग चेन को ये पता चलता तो वह शायद हंस पड़ता। अब उसने लेटने का मन बना लिया था, वह योजनाएं कैसे बना सकता था? इसके अलावा फैंग चेन की इच्छा थी कि वह लिन लुओवेई से फिर कभी न मिले। क्लाउड मिस्ट पर्वत श्रृंखला, यहाँ चारों ओर पहाड़ फैले हुए थे, जहां तक नजर जाती थी अंतहीन रूप से फैले हुए थे। यह एक विशाल क्षेत्र था जिसमें अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने थे जो असंख्य साधकों को प्रशिक्षण के लिए आकर्षित करते थे। इस समय एक गुफा के अंदर एक लंबा वस्त्र पहने एक युवक बैठा था जो कभी कभी दूर की ओर देख रहा था। गुरुजी, क्या आपको लगता है कि यह शिष्य इस बार सफल होगा? प्रकाश की एक किरण टिमटिमाई और जियो यूनटिंग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। शिष्य, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा आत्मविश्वास कम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी योजना बहुत कच्ची है। लिन लुओवेई क्लाउड हेवन होली लैंड की एक विलक्षण प्रतिभा है, बहुत बुद्धिमान, ऐसी योजना से उसे धोखा देना मुश्किल होगा, बूढ़े मिंग ने कहा। अध्याय 3, पुरुष नायक का वीरतापूर्ण बचाव विफल। कुछ समय पहले जब ओल्ड मिंग ने सुना कि जियो यूनटिंग लिन लुओवेई का दिल जीतने के लिए एक वीर बचाव का मंचन करना चाहता है, तो उसने वास्तव में अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ऐसी योजना बहुत आम थी। जियो यूनटिंग को पता था कि लिन लुओवेई वहां से गुजरेगी, इसलिए उसने उसे शातिर जानवर क्षेत्र में ले जाने और उस पर हमला करने के लिए जानवरों की एक लहर को भड़काने का अवसर जब्त कर लिया। वह तभी आगे बढ़ता जब लिन लुओवेई गंभीर रूप से घायल हो जाता और हताश स्थिति में होता। बेशक वह इन शातिर जानवरों को पीछे हटाने नहीं जा रहा था, बल्कि लिन लुओवेई की सख्त रक्षा करने और फिर उसे दूर ले जाने वाला था। इस योजना में एक दोष था, ये दुष्ट जानवर अचानक दंगा क्यों करेंगे और जियाओ यूनटिंग सुविधाजनक रूप से आसपास क्यों था? यदि कोई समझदार व्यक्ति ध्यान से सोचे तो उसे समस्या नजर आ जाएगी। मास्टर, मुझे नहीं लगता कि इस योजना में कोई समस्या है, ये निश्चित रूप से सफल होगी, जियो यूनटिंग ने आत्मविश्वास से कहा। उनका मानना था कि योजना दोषरहित थी, जब तक वह गंभीर रूप से घायल होकर लिन लुओवेई को दूर ले जाएगा, वह निश्चित रूप से उसे जीत लेगा। उसके बाद लिन लुओवेई का पीछा करना आसान होगा। जैसे ही ओल्ड मिंग हिचकिचाए, जियो यूनटिंग ने जारी रखा, मास्टर चिंता न करें, कोई गलती नहीं होगी। उस समय मैं लिन लुओवेई का उपयोग क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए कर सकता हूँ। जब तक मास्टर वहां है, भविष्य में एक संत या पवित्र भगवान बनना पूरी तरह से संभव है। तब मैं मास्टर को उनके भौतिक शरीर को नया आकार देने में मदद कर सकता हूं और मास्टर को बदला लेने में भी मदद कर सकता हूं। जैसे ही जियो यूनटिंग ने बात की, उसकी आंखें चमक उठी। जियो यूनटिंग के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर ओल्ड मिंग आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके और उन्होंने और कुछ नहीं कहा। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन वह अंदर ही अंदर शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये दूसरे व्यक्ति के साथ मूर्ख जैसा व्यवहार नहीं है? ऐसी योजना किसी मूर्ख को तो मूर्ख बना सकती है, लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति को मूर्ख नहीं बना सकती। वास्तव में मूल कथानक में ओल्ड मिंग को जियो यूनटिंग की सफलता से झटका लगा था, क्योंकि उसने सोचा था कि ऐसी योजना बहुत कच्ची थी और केवल एक मूर्ख ही इसके लिए गिर सकता है। लेकिन लिन लुओवेई क्लाउड हेवन पवित्र भूमि का एक विलक्षण व्यक्ति था, या यूं कहें कि यह महिला नायक की बुद्धिमत्ता को पुरुष नायक के सामने जबरदस्ती कम करके आंकना था। वह आ रही है, जियो यूनटिंग सीधे खड़े हो गए, उनकी आंखें सफेद वस्त्र पहने आकृति से भर गईं। वास्तव में वह व्यक्ति लिन लुओवेई था। जानवरों का ज्वार अभी तक नहीं आया है, ऐसा लगता है कि पास में किसी और ने एक आभा छोड़ी है। लिन लुओवेई ने भौहें चढ़ाई। फैंग चेन की आंतरिक आवाज को सत्यापित करने के लिए वह जानबूझकर कुछ समय के लिए क्लाउड मिस्ट पर्वत के आसपास घूमती रही। ये सब जानवरों की भयंकर लहर का सामना करने के लिए है। बूम, अचानक एक गर्जना हुई और धरती कांप उठी। सभी दिशाओं से अनगिनत क्रूर जानवर आए। आखिरकार यहाँ लिन लुओवेई ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, चारों ओर देखा और उसका दिल बहुत शांत था। उसने एक लंबी तलवार पकड़ी और तलवार की रोशनी चमक उठी। ये सभी क्रूर जानवर उसकी तलवार के नीचे मर गए। अनगिनत क्रूर जानवरों के साथ भी वे उसके 2 मीटर के भीतर प्रवेश नहीं कर सके। हालांकि फैंग चेन की आंतरिक आवाज को सत्यापित करने के लिए उसने जानबूझकर खुद को रोक लिया और अपनी ताकत को संरक्षित किया, जिससे खामियां उजागर हो गईं। ये सब जियो युनटिंग को आकर्षित करने के लिए किया गया। लिन लोवेई की जानबूझकर की गई कार्रवाई के कारण उसे जल्दी ही गंभीर चोटें आईं। वह इन शातिर जानवरों से पूरी तरह से पराजित दिखाई दी, मानो थक गई हो। मौका आ गया है, जियो युनटिंग उत्साहित हो गया, सीधे ऊपर उड़ गया और लिन लोवेई के सामने शातिर जानवर को हथेली के प्रहार से पीछे हटा दिया। जियो युनटिंग ने एक मुस्कान दिखाई जिसे वह बेहद सुंदर मानता था। लिन लोवेई को देखा और कहा, युवती क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, लिन लोवेई ने कहा। युवती, मेरा नाम जियाओ युनटिंग है, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? जियो युनटिंग ने आसपास के शातिर जानवरों को मारते हुए लिन लोवेई को देखते हुए पूछा। इन क्रूर जानवरों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन उनकी ताकत बहुत अधिक नहीं थी। इन दुष्ट जानवरों में सबसे शक्तिशाली केवल स्वर्गीय मूल क्षेत्र में थे और उनकी संख्या बड़ी नहीं थी। 10 मार्शल दाव क्षेत्र हैं, सच्चा क्यूई क्षेत्र, आत्मा मूल क्षेत्र, दिव्य सागर क्षेत्र, स्वर्गीय मूल क्षेत्र, दिव्य मूल क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र, रोशनी क्षेत्र, गुई जू क्षेत्र, संत क्षेत्र और महान सम्राट क्षेत्र। हालांकि जियाओ युनटिंग की साधना अभी तक स्वर्गीय मूल क्षेत्र तक नहीं पहुंची थी, वह केवल दिव्य सागर क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। हालांकि क्योंकि वह नायक था, उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत आश्चर्यजनक थी और विभिन्न क्षेत्रों में दुश्मनों को मारना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। इतने सारे खतरनाक जानवर कुछ समय तक उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके, ये वास्तव में सफल हुआ। बूढ़े मिंग का मुंह फड़क उठा। उन्हें ये बात अविश्वसनीय रूप से बेतुकी लगी कि ऐसी योजना वास्तव में सफल हो सकती है। उन्होंने इन पवित्र भूमि के चमत्कारों का अधिक आकलन किया था। भले ही जियो युनटिंग के पास नायक प्रभामंडल था, लेकिन दुष्ट जानवर अंतहीन लग रहे थे, जिससे उनका दबाव अधिक से अधिक बढ़ रहा था। ध्यान से शातिर जानवर के हमले को देखकर जियो युनटिंग बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ा और लिन लोवेई की रक्षा करने की पूरी कोशिश की। यद्यपि उसकी चोटें बढ़ती जा रही थी, फिर भी उसका हृदय अतुलनीय रूप से प्रसन्न था। लिन लोवेई अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हुए होंगे। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि लिन लोवेई न केवल हिल गया था, बल्कि उसने एक प्रकार का उपहास भी दिखाया था, लेकिन उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया। तुम जल्दी से पीछे हट जाओ, लिन लोवेई ने गहरी आवाज में कहा। नहीं, मैं इन दुष्ट जानवरों को तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। जियो युनटिंग ने महसूस किया कि लिन लोवेई उससे प्रभावित था और उसके बारे में चिंतित था। उसका दिल और अधिक उत्तेजित हो गया। जब तक वह पर्याप्त रूप से घायल था, लिन लोवेई स्वाभाविक रूप से बेहद भावुक हो जाएगा, तब उसकी योजना सफल हो जाएगी। अगले ही पल जियो युनटिंग सीधे दंग रह गया। तुम मुझे रोक रहे हो, यदि आप नहीं हिलेंगे तो मैं दुष्ट जानवरों को कैसे मार सकता हूँ? इसके अलावा मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं इसे स्वयं संभाल सकता हूँ, लिन लोवेई ने ठंडे स्वर में कहा। क्या मजाक, मेघ स्वर पवित्र भूमि की एक विलक्षण प्रतिभा होने के नाते उसकी साधना निम्न कैसे हो सकती थी? वह पहले से ही स्वर्गीय मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। इसके अलावा जब वह इस बार बाहर आई तो उन्होंने अपने लिए कई तुरुप के पत्ते भी तैयार कर रखे थे। यहां तक कि जियो युनटिंग के बिना भी लिन लोवेई इन शातिर जानवरों से निपट सकता था। इसके विपरीत जियो युनटिंग के सामने खड़े होने के कारण उसके लिए अभिनय करना मुश्किल था। जल्दी से एक तरफ हटो, लिन लोवेई ने अशिष्टता से कहा। लिन लोवेई की ठंडी आवाज सुनकर जियो युनटिंग अवचेतन रूप से एक तरफ हट गया। दर्जनों शातिर जानवर दहाड़ते हुए आए और जियो युनटिंग ने अवचेतन रूप से कहा, सावधान रहो, इन सभी दुष्ट जानवरों के पास स्वर्गीय मूल क्षेत्र की साधना है। उसने बड़ी मेहनत से आसपास के सभी दुष्ट जानवरों को आकर्षित किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे स्वर्गीय मूल क्षेत्र के दुष्ट जानवर आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अभी इतने लोग नहीं थे। उसका उद्देश्य उन्हें एक निराशाजनक स्थिति में डालना था और फिर वह लिन लोवेई को दूर ले जाने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करेगा। इस तरह लिन लोवेई जरूर भावुक हो जाती। अगर उसने फैंग चेन की अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी होती तो जियाओ युनटिंग जरूर कामयाब हो जाती। लेकिन लिन लोवेई अच्छी तरह से तैयार थी और वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए उसने पर्याप्त तैयारी कर रखी थी। पहाड़ पलटने वाली सील, लिन लोवेई शांत दिख रहे थे और एक विशाल हथेली का निशान आकाश से उतरा, एक बड़े पहाड़ की तरह आभा से भरा हुआ। धमाका, विशाल हथेली का निशान नीचे गिर गया, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई तथा इन क्रूर जानवरों की सीधे मौत हो गई। माउंटेन ओवरटर्निंग सील की शक्ति ने सीधे जियो युनटिंग को चौंका दिया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। लिन लोवेई ने सिर्फ एक ही चाल में दर्जनों स्वर्गीय मूल क्षेत्र के दुष्ट जानवरों को मार डाला। जियो युनटिंग दंग रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन लोवेई इतना शक्तिशाली होगा। स्वर्गीय मूल क्षेत्र 9वें स्वर्ग और शक्तिशाली जादुई कलाकृतियों के मालिक, जब तक कि यह 5वें क्षेत्र का दिव्य मूल क्षेत्र विशेषज्ञ न हो, उसे नुकसान पहुंचाना असंभव है। शिष्य, इस बार तुम्हारी योजना विफल हो गई, बूढ़ा मिंग बोला। अध्याय 4, सफलतापूर्वक सपाट लेटना, क्यान कुंसील मंत्र प्राप्त करना। ये बहुत ही हास्यास्पद था कि लिन लोवे अभी अभी घायल होने ही वाला था। स्वर्गीय मूल क्षेत्र, 9वें स्वर्ग और क्लाउड स्वर्ग पवित्र भूमि की एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में, ये हास्यास्पद होगा यदि वह दिव्य समुद्र क्षेत्र के क्रूर जानवरों के एक समूह द्वारा घायल हो गई। जियो युनटिंग चुप रही। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका पूर्व हस्तक्षेप वास्तव में अनावश्यक था। गुरुजी, आज मेरी योजना विफल हो गई, लेकिन मैं उसके माध्यम से क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में प्रवेश कर सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? अपनी योजना को विफल होते देख, वह केवल लिन लोवेई पर भरोसा कर सकता था ताकि वह क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में प्रवेश कर सके। ये कहना मुश्किल है, हालांकि आपने उसकी मदद की, लेकिन इसका असर ज्यादा नहीं हुआ। शायद आपके अच्छे इरादों को देखते हुए वह आपको क्लाउड हेवन होली लैंड की सिफारिश कर सकती है। बूढ़ा मिंग भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। दहाड़ने की एक और श्रृंखला सुनाई दी, अनगिनत क्रूर जानवर गिर गए और आसपास के क्रूर जानवर डर के मारे भाग गए। लिन, ये युवती, जियो युनटिंग उसे सीधे मिस लिन कहकर संबोधित करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अभी तक लिन लोवेई को नहीं जानता था। हालांकि उसे सुनने के बाद लिन लोवेई की आंखें चमक उठी। यह जियो युनटिंग वास्तव में उसे जानता था। यह क्या है? लिन लोवेई ने गहरी आवाज में कहा। ओह, मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम्हें क्या कहूँ, जियो युनटिंग ने अजीब मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनकी योजना दोषरहित है और सफल होगी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लिन लोवेई इतना शक्तिशाली होगा जो सीधे इन शातिर जानवरों में भय पैदा कर देगा। लिन लोवेई, उसने जियाओ युनटिंग की ओर देखा, वह भी ये देखना चाहती थी कि यह आदमी वास्तव में क्या कर रहा है। क्या आप क्लाउड हेवन होली लैंड के लिन लोवेई हैं, जिन्हें पूर्वी देव डोमेन का नंबर एक कौतुक माना जाता है? जियो युनटिंग ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। उन्होंने लिन लोवेई की स्थिति को बहुत ऊंचा कर दिया। उसे पूर्वी देव क्षेत्र की नंबर एक प्रतिभा कहना उस पर एक अच्छी छाप छोड़ना था। हालांकि यह चापलूसी जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसी प्रशंसा से कौन इनकार कर सकता है। नंबर एक प्रतिभाशाली मैं नहीं हूं, लिन लोवेई ने मन ही मन उपहास किया। यह जियाओ युनटिंग वास्तव में नकली था, शायद उसे अपनी ही बातों पर विश्वास नहीं था। वह उसे स्पष्ट रूप से जानता था, फिर भी उसने पूरी तरह से अपरिचित होने का नाटक किया। क्या आप क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के लिन लोवेई नहीं हैं? जियो युनटिंग ने उलझन का नाटक करते हुए पूछा। मैं क्लाउड हेवन होली लैंड का लिन लोवेई हूँ, लेकिन मैं पूर्वी देव डोमेन का नंबर एक कौतुक नहीं हूँ। कृपया भविष्य में ऐसी बातें कहने से बचें, नहीं तो आप खुद को मूर्ख बना लेंगे, लिन लोवेई ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा। क्लाउड हेवन होली लैंड के सन फोंगचेन के बारे में सोचते हुए, भले ही वह पहले उन्हें बहुत नापसंद करती थी, प्रतिभा के मामले में पूरे पूर्वी देव डोमेन में कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता था। या यूं कहें कि तियानिक्सुआन विश्व में बहुत कम लोग इसकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन मेरे दिल में मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से पूर्वी देव डोमेन के नंबर एक कौतुक बन जाएंगे। कोई भी आपकी तुलना नहीं कर सकता है, जियाओ युनटिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक वह उसकी पर्याप्त चापलूसी करता रहेगा, तब तक उसके पास अभी भी एक मौका था। कृपया भविष्य में ऐसी बातें न कहें, लिन लोवेई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। जियाओ युनटिंग की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई। लिन लोवेई सचमुच अडिग था। ये जानते हुए कि लिन लोवेई को ऐसे विषयों पर चर्चा करना पसंद नहीं है, जियो युनटिंग ने आगे दबाव नहीं डाला और विषय बदल दिया। लिन जियानजी, मैंने लंबे समय से क्लाउड हेवन पवित्र भूमि की प्रशंसा की है और हमेशा वहां खेती करने की इच्छा रखी है। हालांकि क्लाउड हेवन होली लैंड के किसी अमर ने मुझे नहीं देखा है और मैं वहां प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या परी मेरी सिफारिश कर सकती है। परी, शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन जब मैं छोटी थी तब मेरे परिवार का नाश हो गया था और मेरे दुश्मन इतने शक्तिशाली थे कि मैं उनसे बदला नहीं ले सकती थी। अगर मैं क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में साधना कर सकूं और साथ ही अपनी मेहनती साधना कर सकूं, तो मैं निश्चित रूप से अपना बदला ले पाऊंगी। जियो युनटिंग ने जिस गहरी नफरत की बात कही थी, वह स्वाभाविक रूप से नकली थी। ये केवल जियो युनटिंग द्वारा जानबूझकर दुख का नाटक करना था, लिन लोवेई की सहानुभूति प्राप्त करने और उसे क्लाउड हेवन होली लैंड में शामिल होने की सिफारिश करने के लिए एक जानबूझकर किया गया कार्य था। लिन लोवेई सोच रही थी कि शायद उसके पूरे परिवार को जियाओ युनटिंग के पिता ने मार डाला होगा और फिर भी यह जियाओ युनटिंग अपनी गहरी नफरत की बात करके उसकी सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहा था। लिन लोवेई को घृणा की लहर महसूस हुई। उसके भीतर हत्या की इच्छा जाग उठी। वह चाहती थी कि वह भी इस जियाओ युनटिंग का वध कर दे। हालांकि उसे याद था कि जियो युनटिंग फोंगचेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और वह जियो युनटिंग के माध्यम से फोंगचेन के आंतरिक विचारों को भी सत्यापित करना चाहती थी। कुछ क्षण विचार करने के बाद लिन लोवेई ने कहा, ठीक है, मैं आपकी सिफारिश करूंगा। लिन लोवेई को सहमत देखकर जियो युनटिंग बहुत खुश हुआ और जल्दी से बोला, आपकी मदद के लिए धन्यवाद परी। ऊपर से तो वह बहुत आभारी था, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, कितनी घमंडी औरत है। बस इंतजार करो, आगे चलकर तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। और इसलिए लिन लोवेई ने जियो युनटिंग को क्लाउड हेवन होली लैंड में शामिल होने के लिए लाया। ये खबर स्वाभाविक रूप से फोन चेन के कानों तक पहुंच गई। मेघ स्वर पवित्र भूमि के संत के रूप में फोन चेन का दर्जा स्वयं सिद्ध था, पवित्र प्रभु के बाद दूसरे स्थान पर। उसके नीचे के लोग जानबूझकर फोन चेन के लिए जानकारी इकट्ठा करते थे। लिन लोवेई से संबंधित समाचार भी पहले अवसर पर फोन चेन को बता दिया गया। महाराज, संत, ऐसा लगता है कि जियाओ युनटिंग का लिन जियानजी के साथ घनिष्ठ संबंध है। क्या हमें कुछ करना चाहिए? पवित्र आत्मा शिखर के रक्षक कमांडर क्यूलोंग नामक एक व्यक्ति ने फोन चेन से पूछा। उसकी साधना स्वाभाविक रूप से कम नहीं थी और वह कई वर्षों से फोन चेन का अनुसरण करता रहा था, उसके प्रति वफादार था। फैन चेन ने कई मामलों को क्यूलोंग को सौंप दिया। क्यूलोंग जानता था कि फैन चेन लिन लोवेई को पसंद करता था और लंबे समय से लिन लोवेई को अपना संत दाओ साथी मानता था। इसलिए वह अक्सर जानबूझकर लिन लोवेई की गतिविधियों पर ध्यान देता था। कोई जरूरत नहीं है, अब से लिन लोवेई के बारे में मुझे कुछ भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समय की बर्बादी है, फैन चेन ने सीधे कहा। अब जबकि उसने लेटने का निर्णय कर लिया था, वह पुरुष और महिला पात्रों के साथ जुड़ने में बहुत आलसी था, क्योंकि यह उसके लेटने की योजना के लिए हानिकारक होता। ये सुनकर क्यूलोंग को बहुत आश्चर्य हुआ, उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इससे पहले लिन लोवेई की खबर सुनकर वह बहुत चिंता भी दिखाते थे, फिर भी अब वह इतना उदासीन हो गया था, यहां तक कि तिरस्कार भी दिखा रहा था। क्या संत अब लिन लोवेई को पसंद नहीं करते थे? समझा, क्यूलोंग ने आगे कुछ नहीं पूछा। चूंकि फैंग चेन ने उसे ऐसा करने का निर्देश दिया था, इसलिए वह ऐसा ही करेगा। संत के कारणों के बावजूद ये जांच करने का काम उनके लिए नहीं था। अपनी भव्य योजना को विफल करने के लिए फैंग चेन ने एक अनुस्मारक भी जोड़ा, इसके अलावा उस जियो युनटिंग के बारे में, भविष्य में उसके साथ संघर्ष न करें, बस उसे अनदेखा करें। अधिकांश उपन्यासों के अनुसार खलनायक फोंग चेन प्रारंभिक अवस्था में जानबूझकर जियो युनटिंग का दमन करेगा। ये वास्तव में इस दमन के कारण ही था कि नायक तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपना नाम बनाया। फैंग चेन ने अब सपाट लेटने का फैसला किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जियो युनटिंग से परेशान नहीं होगा। इसके अलावा वह वास्तव में जानना चाहता था कि क्या जियो युनटिंग उसके हस्तक्षेप के बिना कम समय में तेजी से आगे बढ़ सकता है। तभी फोंग चेन के दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग, मेजबान को सफलतापूर्वक सपाट लेटने के लिए बधाई। आपको सेंट ग्रेट गुप्त तकनीक कियानकुन सील मंत्र प्राप्त हुआ है। क्योंकि फैंग चेन ने पुरुष और महिला नायकों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए सिस्टम ने इसे सपाट माना और इस प्रकार उसे इनाम दिया। सेंट ग्रेट गुप्त तकनीक कियानकुन सील मंत्र, बुरा नहीं, बुरा नहीं। फैंग चेन की आंखों में एक चमक चमक उठी। पवित्र भूमि के संत होने के बावजूद उनके पास उच्च स्तरीय गुप्त तकनीकों की कमी नहीं थी। संत श्रेणी की गुप्त तकनीकों की तो बात ही छोड़िए, फोंग चेन के पास सम्राट श्रेणी की कई गुप्त तकनीकें भी थीं। हालांकि ऐसी उच्च स्तरीय गुप्त तकनीकों के बारे में कौन शिकायत करेगा? ऐसी सेंट ग्रेट गुप्त तकनीक स्वाभाविक रूप से अत्यंत शक्तिशाली थी, जो असाधारण शक्ति को उन्मुक्त करती थी। एक अतिरिक्त गुप्त तकनीक ने उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ा दिया और एक अतिरिक्त तुरुप का पत्ता प्रदान किया, इसलिए फैंग चेन को कभी भी बहुत अधिक होने की शिकायत नहीं होगी। अध्याय 5, इस आदमी में मर्दवादी प्रवृत्ति है। होस्ट फैंग चेन। उम्र 20। साधना सम्राट क्षेत्र छठा स्वर्ग। प्रतिभा सहज दाओ शरीर। गुप्त तकनीकें जुबान तियान सम्राट धर्मग्रंथ असीम दिव्य दाओ हुआ जुबान स्वर्ग आवरण धर्मग्रंथ एक विचार शाश्वत कियानकुन सील मंत्र। दिव्य हथियार ताई दिव्य तलवार आत्मा स्वर्ग मुहर। फैंग चेन की साधना सम्राट क्षेत्र छठे स्वर्ग तक पहुंच गई थी और उसके पास इस दुनिया में सबसे मजबूत शारीरिक संरचनाओं में से एक थी जन्मजात दाओ शरीर। उन्होंने जिस साधना तकनीक का अभ्यास किया उसमें जुबान तियान सम्राट शास्त्र और असीम दिव्य दाओ शामिल थे, जो दोनों ही सम्राट स्तर के थे। उन्होंने जो गुप्त तकनीकें विकसित की वे कम से कम सेंट ग्रेड की थीं और उनके हाथों में दिव्य हथियार भी सेंट ग्रेड जादुई कलाकृतियां थीं। उनमें से ताई दिव्य तलवार आक्रमण में अद्वितीय थी, निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय सेंट ग्रेड जादुई कलाकृति थी, जबकि आत्मा स्वर्ग सील दिव्य आत्मा की रक्षा कर सकती थी, जो आक्रमण और रक्षा दोनों में सक्षम थी। इन जादुई खजानों साधना तकनीकों और गुप्त तकनीकों के साथ फैंग चेन को सातवें क्षेत्र रोशनी क्षेत्र के एक मजबूत अभ्यासी का सामना करने में भी डर नहीं लगा। ये कहा जा सकता है कि पूरे तियानिक्सुआन विश्व में उसी क्षेत्र में युवा पीढ़ी के विलक्षण व्यक्तियों में बहुत कम लोग थे जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत आधार के साथ वह एक मस्तिष्क मृत महिला के सामने क्यों झुकेगा, फैंग चेन ने खुद से कहा। वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि इस संस्था का मूल स्वामी, जिसके पास ऐसा आधार है, ऐसा क्यों करेगा। यदि वह पृष्ठभूमि चाहता तो उसके पास पृष्ठभूमि थी, यदि वह प्रतिभा चाहता तो उसके पास प्रतिभा थी, यदि वह शक्तिशाली साधना तकनीक चाहता तो उसके पास शक्तिशाली साधना तकनीक थी, यदि वह दिव्य हथियार चाहता तो उसके पास दिव्य हथियार थे। वह हर लिहाज से अव्वल दर्जे का था, बिल्कुल ब्लू स्टार के किसी अमीर, खूबसूरत और लंबे आदमी जैसा। ऐसा इंसान लगभग बेमिसाल था। इस स्थिति में एक दिमागी रूप से मृत महिला के सामने गिड़गिड़ाना, और मुख्य बात ये थी कि वह महिला उससे प्यार भी नहीं करती थी, पूरी तरह से इसके लायक नहीं था। ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में महान दाव का पीछा न करना नुकसानदेह था, उसे सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में कदम रखने का प्रयास करना चाहिए। भले ही वह सम्राट क्षेत्र तक नहीं पहुंच सके, फिर भी भविष्य में संत क्षेत्र तक पहुंचना बहुत अच्छा होगा। इस जुवानहुआन दुनिया में जहां ताकतवर कमजोर पर हमला करता है, ताकत ही हर चीज का आधार है, ताकत के बिना आप कुछ भी नहीं है। मैं कई दिनों से सुस्ती बरत रहा हूं और मेरी साधना भी एक स्वर्ग बढ़ गई है। इसी गति से मुझे सातवें लोक, प्रकाश लोक तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, फैंग चेन ने मन ही मन गणना की। छठे लोक, सम्राट लोक में प्रवेश करने के बाद साधना की गति धीमी हो जाती। उसके लिए केवल 3 दिनों में एक स्वर्ग का सुधार होना अत्यंत दुर्लभ घटना थी। इसके अलावा जितना ज्यादा वह सुस्त होता गया, उतनी ही तेजी से उसकी साधना में सुधार हुआ। भविष्य में सम्राट राज्य में प्रवेश करना कोई सपना नहीं था। 10 साधना क्षेत्र, सच्चा क्यूई क्षेत्र, आत्मा मूल क्षेत्र, दिव्य सागर क्षेत्र, स्वर्गीय मूल क्षेत्र, दिव्य मूल क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र, रोशनी क्षेत्र, गुई जू क्षेत्र, संत क्षेत्र और महान सम्राट क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र में 9 स्वर्ग हैं। पहले 3 स्वर्गों को प्रारंभिक चरण कहा जा सकता है, बीच के 3 स्वर्गों को मध्य चरण कहा जा सकता है और अंतिम 3 स्वर्गों को उत्तर चरण कहा जा सकता है। वर्तमान में फैंग चेन ने सम्राट दायरे छठे स्वर्ग को तोड़ दिया है, जो सम्राट दायरे का मध्य चरण भी है। यदि वह एक और स्वर्ग को तोड़ता है तो वह सम्राट क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच जाएगा। अपने साथियों के बीच ऐसी साधना बिल्कुल दुर्लभ अस्तित्व है, जैसे फीनिक्स पंख या किलिन सिंह। मुझे याद है कि ज़ियाओ युनटिंग की साधना में पहली उल्लेखनीय वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि मैंने अपने अधीनस्थों से उसे दबाने को कहा था, जिसके कारण उसे एक अवसर प्राप्त हुआ जिससे उसकी साधना में वृद्धि हुई। इस मामले के कारण भी ज़ियाओ युनटिंग ने क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की और खुद को स्थापित किया। अब जब मैं ज़ियाओ युनटिंग को दबा नहीं रहा हूं, तो मुझे आश्चर्य है कि इस आदमी की साधना में उल्लेखनीय सुधार कैसे होगा, फैंग चेन ने मन ही मन सोचा। ज़ियाओ युनटिंग के क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में प्रवेश करने के बाद उनकी प्रारंभिक साधना प्रगति फैंग चेन से निकटता से संबंधित थी। ये कहने के बजाय कि यह ज़ियाओ युनटिंग का दमन था, यह उसे अवसर प्रदान करने जैसा था। अंत में उसने पलट कर आपके चेहरे पर थप्पड़ भी मारा। ये पूरी तरह से एक अकृतज्ञ कार्य था। अब जबकि फैंग चेन ने हार मान ली थी, वह देखना चाहता था कि यह ज़ियाओ युनटिंग अवसर कैसे प्राप्त करेगा और वह उसके मुंह पर कैसे तमाचा मारेगा। फैंग चेन के आदेश जारी करने के बाद कोई भी ज़ियाओ युनटिंग को परेशान करने नहीं गया और किसी भी संत ने जानबूझकर उसे दबाया नहीं। साथ ही उन्हें सिर्फ इसलिए बहिष्कृत नहीं किया गया क्योंकि लिन लोवेई उन्हें लेकर आए थे। ज़ियाओ युनटिंग को केवल सबसे साधारण शिष्य के रूप में माना जाता था। ज़ियाओ युनटिंग आधे महीने से क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वह क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में व्यवस्थित रूप से साधना भी कर रहा था। ये बहुत शांतिपूर्ण था, कुछ हद तक ज़ियाओ युनटिंग की कल्पना से परे, जिससे उसे बहुत असहज महसूस हुआ। गुरुजी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, ज़ियाओ युनटिंग ने मन ही मन कहा। क्या ठीक नहीं है? बूढ़ा मिंग बहुत हैरान था। क्या ऐसी शांतिपूर्ण साधना अच्छी नहीं है? दरअसल मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। यह इतना शांत नहीं होना चाहिए। मास्टर, क्या यह अफवाह नहीं है कि क्लाउड हेवन होली लैंड के संत लिन लोवेई के बहुत शौकीन हैं? लिन लोवेई से जुड़ा कोई भी पुरुष इस संत द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा। मुझे लिन लोवेई ने पेश किया था और उसके साथ मेरा रिश्ता उथला नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में इन संत महामहिम को मुझे बहिष्कृत और दबा देना चाहिए था, लेकिन आधा महीना बीत चुका है और कोई भी मुझे बहिष्कृत या दबाने नहीं आया है। इससे मुझे बहुत अजीब और असहज महसूस हो रहा है, ज़ियाओ युनटिंग ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण किया। साथ ही उन्हें एक अजीब सा एहसास भी हुआ कि कई महत्वपूर्ण चीजें गायब थीं। पिछले कुछ दिनों ने ज़ियाओ युनटिंग को विशेष रूप से उत्तेजित कर दिया था, मानो कुछ विशेष कारण उससे दूर होते जा रहे थे। वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। बूढ़े मिंग ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह तुम्हारी साधना के बहुत उबाव होने और चीजों के बारे में बहुत अधिक सोचने का परिणाम है। बादल स्वर्ग संत के दृष्टिकोण से इसके बारे में सोचें। अगर उन्होंने सुना कि लिन लोवेई एक साधारण शिष्य को लाए हैं जिसमें ज्यादा प्रतिभा या ताकत नहीं है, तो क्या उन्हें ऐसी चीजों की परवाह होगी? मैं आपको बता दूं, उनके पास एक मजबूत पृष्ठभूमि, उच्च प्रतिभा और वह सब कुछ है जो वह चाहते हैं। उनके स्तर के किसी व्यक्ति की नज़र में साधारण शिष्य चींटियों के समान होते हैं और वह उनकी परवाह नहीं करते। बूढ़े मिंग ने मन ही मन सोचा कि ज़ियाओ युनटिंग में पुरुषवादी प्रवृत्ति प्रतीत होती है। अन्य लोग ये जानते हुए कि संत लिन लोवेई से प्यार करते थे और उनका परिचय लिन लोवेई ने कराया था और वे उनके करीब थे, वे संत के साथ सौहार्दपूर्वक रहना चाहते थे। लेकिन इसके विपरीत इस व्यक्ति को उम्मीद थी कि संत उसे बहिष्कृत कर देंगे और उसका दमन करेंगे। यदि यह पुरुषवादी प्रवृत्ति नहीं है तो फिर क्या है? ज़ियाओ युनटिंग ने मुंह खोला, जवाब देना चाहा, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े मिंग की बातों में कुछ दम था। बूढ़े मिंग का ये कहना कि वह एक चींटी है उसे बहुत असहज महसूस कराता था, लेकिन ये सच भी था। वर्तमान में वह किसी भी पहलू में संत की तुलना नहीं कर सकता था, अंतर सिर्फ थोड़ा सा नहीं था। दूसरे पक्ष का उसकी परवाह न करना स्वाभाविक था। अगर वह होता तो शायद उसे भी ऐसी चींटी की परवाह न होती। बूढ़े मिंग ने ज़ियाओ युनटिंग के निराश मन को भांप लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, निराश मत हो, ये वास्तव में तुम्हारा अवसर है। वह जितना तुम्हें नीचा दिखाएगा, तुम्हें उठने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। एक बार तुम उठोगे तो निस्संदेह सबके मुंह पर जोरदार तमाचा मारोगे। हालांकि तुम्हारी प्रतिभा की तुलना अभी उन शीर्ष प्रतिभाओं से नहीं की जा सकती, फिर भी मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारे पास आगे बढ़ने का समय भी है। अगर तुम मेरी जरूरतों के अनुसार लगन से साधना करते रहोगे तो भविष्य में तुम निश्चित रूप से क्लाउड हेवन की पवित्र भूमि को रौंद सकते हो। इसके अलावा मेघ स्वर पवित्र भूमि के उस संत का कोई विकल्प नहीं है। भविष्य में यदि आप उससे आगे निकल जाते हैं और उसे पैरों तले रौंद देते हैं तो आप मेघ स्वर पवित्र भूमि के नए संत बन सकते हैं। ज़ियाओ युनटिंग को उसकी निराशा से उबरने में मदद करने के लिए ओल्ड मिंग ने उसकी मनोवैज्ञानिक लचीलापन भी विकसित करना शुरू कर दिया। अध्याय 6, सुस्ती से अच्छा महसूस होता है, साधना बढ़ती है। बूढ़े मिंग ने ये बातें इसलिए कही क्योंकि वह चाहता था कि ज़ियाओ युनटिंग उसके खराब मूड से प्रभावित न हो। साथ ही वह ये भी जानता था कि ज़ियाओ युनटिंग एक आत्म महत्वपूर्ण व्यक्ति था। भले ही वह सभी पहलुओं में विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था, ये लड़का अंततः उसके भविष्य की कुंजी था। भले ही वह सभी पहलुओं में विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था, लेकिन यह व्यक्ति अंततः उसके भविष्य के भौतिक शरीर पुनर्निर्माण। बूढ़े मिंग के पास सांत्वना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज़ियाओ युनटिंग को दिलासा देने और उसे सुधार के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने। मास्टर जी, मैं समझ गया। ज़ियाओ युनटिंग गहरी सांस ली, उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं। हालांकि ओल्ड मिंग के शब्द बहुत प्रभावी थे, ज़ियाओ युनटिंग के लिए बहुत प्रभावी थे। उन्होंने निराश लोगों को शीघ्र ही पुनर्जीवित कर दिया। ज़ियाओ युनटिंग को शीघ्र ही पुनर्जीवित कर दिया। अब उसका एक लक्ष्य था, आगे बढ़ना, फैंग चेन से आगे निकलना और उसे पैरों तले रौंदना। वह ये बताना चाहता था, बादलों के स्वर पवित्र भूमि के इस संत को ये बताना चाहता था कि एक चींटी भी पेड़ को हिला सकती है। ओल्ड मिंग गहरी सांस ली, आखिरकार इस आदमी को खुश कर दिया। यह आदमी सचमुच परेशान करने वाला था। न केवल वह आत्म महत्वपूर्ण था बल्कि उसकी इच्छा शक्ति भी दृढ़ नहीं थी। यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता है, मैंने कई विलक्षण प्रतिभाएं देखी हैं। सबसे पहले सुधार करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप अंत तक पहुंच सकते हैं और सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। मैं कदम रख सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आप उस फैंग चेन से भी तेजी से सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। मैं कदम रख सकते हैं, और यदि नहीं भी तो आप निश्चित रूप से भविष्य में उससे आगे निकल जाएंगे। ओल्ड मिंग मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, यदि आपको एक और अवसर दिया जाए तो क्या आप फोंग चेन को चुनेंगे? चुनेंगे या मुझे? किसी कारण से ज़ियाओ युनटिंग फोंग चेन के साथ मतभेद में लग रहा था। अब वह अपनी तुलना फोंग चेन से करना चाहता था हर पल। ओल्ड मिंग ये सुनकर दंग रह गया, फिर मन ही मन को उसने लगा, वह अभी भी तुलना कर रहा है। तुम अपने आप को भी नहीं देखते, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो फोंग चेन से तुलना कर सके? अगर उसे एक और मौका दिया जाए, बशर्ते उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट न हो, तो वह फैंग चेन को चुनेगा। अगर मैंने फैंग चेन को चुना तो मैं तुरंत अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण कर सकता था, मुझे तुम्हारे साथ कष्ट और परिश्रम क्यों सहना पड़ता? हालांकि ओल्ड मिंग बेबसी का एहसास हुआ, इस आदमी को सचमुच कोई आत्म जागरूकता नहीं थी। आप भविष्य के बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन अभी आपके पास फोंग चेन से अपनी तुलना करने के लिए क्या योग्यताएं हैं? बूढ़े मिंग ने अभी कहा था कि प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन मार्शल दाव के अंत तक पहुंचना महत्वपूर्ण था। लेकिन एक और बात थी जो उसने ज़ियाओ युनटिंग को नहीं बताई थी, शायद किसी और का शुरुआती बिंदु आपका अंतिम बिंदु था, यही अंतराल था। मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें चुनूंगा, ये कभी नहीं बदलेगा। हालांकि आपकी साधना और प्रतिभा फांग चेन से कमतर है, फिर भी मैं, आपके गुरु, आप पर विश्वास करता हूँ। आप अपने प्रयासों और मेरे मार्गदर्शन से भविष्य में उस फांग चेन से भी आगे निकल सकते हैं। हालांकि बुरेमिंग ने आंतरिक रूप से ऐसा सोचा था, फिर भी उसे सतह पर जियाओ युनटिंग को दिलासा देना था और उसे आत्मविश्वास देना था। उसे किसने बताया कि उसने अपना चुनाव पहले ही कर लिया है? मास्टर, निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से फैंग चेन से आगे निकल जाऊंगा और उसे पैरों तले रौंद दूंगा। बुरेमिंग का सकारात्मक उत्तर पाकर जियो युनटिंग भी आश्वस्त हो गया, मानो उसके शरीर में शक्ति भर गई हो और उसकी लड़ने की भावना बढ़ गई। दूसरी ओर लिन लोवेई लगातार फैंग चेन की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। खासकर जब से जियाओ युनटिंग ने क्लाउड हेवन होली लैंड में प्रवेश किया है, वह जानना चाहती थी कि फैंग चेन क्या करेगा। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए फैंग चेन ने जियो युनटिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि वह नहीं जानता था कि जियो युनटिंग क्लाउड हेवन होली लैंड में शामिल हो गया था। पिछले आधे महीने से फैंग चेन ने लिन लोवेई से एक बार भी मुलाकात नहीं की थी, मानो वह उसके बारे में भूल गया हो, जिससे लिन लोवेई बहुत असहज महसूस कर रही थी। इससे पहले फैंग चेन हर दिन उसके सामने आता था, जिससे वह बहुत परेशान हो जाती थी। अब फैंग चेन के न आने से लिन लोवेई को काफी असहज महसूस हुआ। क्या इस फैंग चेन ने सचमुच मेरा पीछा करना छोड़ दिया, या यह आदमी मुश्किल से मिल रहा है? लिन लोवेई का दिमाग गड़बड़ा गया था। अतीत में वह बहुत प्रसन्न होती, लेकिन अब फैंग चेन, जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी, दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वह बहुत ही अपरिचित हो गई थी। इससे पहले फैंग चेन की आंतरिक आवाज को अस्पष्ट रूप से सुनने के कारण लिन लोवेई के दिल में एक अजीब भावना पैदा हो गई। नहीं, मैं बिल्कुल भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझे पता लगाना है कि उस समय मेरे परिवार को किसने बर्बाद किया था। क्या ये फैंग चेन था या जियाओ युनटिंग के पिता, जैसा कि फैंग चेन की आंतरिक आवाज ने कहा था? लिन लोवेई ने गहरी सांस ली। उस समय उसका लिन परिवार नष्ट हो गया था और वह अकेली बची थी। इन वर्षों में वह यथाशीघ्र बदला लेने के लिए आतुर थी। वह मानती थी कि हत्यारा फैंग चेन था, यही कारण था कि वह उससे इतनी नफरत करती थी। लेकिन अब फैंग चेन की आंतरिक आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि हत्यारा वह नहीं था, बल्कि जियो युनटिंग का पिता था, जिसने उसके दिमाग को अराजकता में डाल दिया। यदि हत्यारा फैंग चेन नहीं था, तो उसका पिछला व्यवहार एक कृतघ्न भेड़िए से कैसे भिन्न था? ये सोचकर लिन लोवेई का दिल भारी हो गया। पवित्र आत्मा शिखर, फैंग चेन आराम से कुर्सी पर लेटा हुआ था, हवा का आनंद ले रहा था और सुंदर पहाड़ी दृश्यों की प्रशंसा कर रहा था और पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा था। आलस करना वाकई आरामदायक है। अनजाने में ही मैं पहले ही दूसरे स्वर्ग के प्रकाश क्षेत्र में पहुंच चुका हूँ। साधना की ऐसी गति सचमुच अकल्पनीय है। कुछ समय पहले तक मैं केवल छठे स्वर्ग के दायरे का सम्राट था। कितना समय बीत चुका है और मुझे पहले ही एक प्रमुख दायरे में सफलता मिल चुकी है। उद्धरण चिन्ह। फैंग चेन मन ही मन संतुष्ट होकर हंस पड़ा। आधे महीने की सुस्ती के बाद भी उनकी साधना में कमी नहीं आई थी, बल्कि इसमें बहुत तेजी से प्रगति हुई थी। वह पहले ही छठे स्वर्ग के सम्राट क्षेत्र से दूसरे स्वर्ग के प्रदीप्ति क्षेत्र तक पहुंच चुका था। ऐसी गति की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी जब वे क्लाउड हेवन होली लैंड के संत और पूर्वी देव क्षेत्र के विलक्षण विद्वान थे। यदि वह पहले इस स्तर तक पहुंचना चाहता तो उसे एक आश्चर्यजनक अवसर प्राप्त होता, अन्यथा आधे महीने में वह अधिक से अधिक दो या तीन स्वर्ग तक सुधार कर सकेगा। अब जबकि वह आराम कर रहा था, पूरे दिन होली स्पिरिट पीक पर लेटा हुआ दृश्यों और दुनिया के शानदार परिदृश्यों की प्रशंसा कर रहा था, वह अभी भी तेजी से सुधार कर सकता था। इसके अलावा उनकी साधना तकनीक और गुप्त तकनीकों में भी काफी सुधार हुआ था। प्रतिदिन की इस सुस्ती का उनकी पिछली दिन रात की निरंतर साधना की तुलना में अत्यधिक बेहतर प्रभाव पड़ा। तो फिर इतना मेहनती होने का क्या मतलब है? आलस करना बेहतर है, फैंग चेन ने मन ही मन सोचा। पहले फैंग चेन बहुत मेहनती था, अन्यथा वह 20 साल की उम्र में सम्राट दायरे छठे स्वर तक नहीं पहुंच पाता और क्लाउड हेवन पवित्र भूमि का संत नहीं बन पाता। इससे भी अधिक संतोषप्रद है आराम करना और सीधा लेट जाना, ये हमेशा इसी तरह संतोषप्रद होता है। समय की गिनती करते हुए स्वर्गीय फिर्मामेंट संप्रदाय गुप्त क्षेत्र जल्द ही प्रकट होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि जब स्वर्गीय फिर्मामेंट संप्रदाय गुप्त क्षेत्र प्रकट होता है तो जियो युनटिंग को क्या अवसर मिलेगा। फैंग चेन पुस्तक के कथानक से बहुत परिचित था, क्योंकि पुस्तक इतनी नाटकीय थी कि उसे वह गहराई से याद थी। विशेष रूप से प्रारंभिक कथानक में जियो युनटिंग का प्रारंभिक उत्थान फैंग चेन के दमन पर निर्भर था, जिसने इस व्यक्ति को कई बार अवसर प्राप्त करने की अनुमति दी। उसकी साधना भी तेजी से आगे बढ़ी और वह जल्दी से क्लाउड हेवन होली लैंड के भीतर विकसित हुआ। पुस्तक में मूल कथानक के अनुसार जियो युनटिंग अब चौथे क्षेत्र स्वर्गीय मूल क्षेत्र तक पहुंच गया था। हालांकि फैंग चेन के सुस्त होने के कारण किसी ने विशेष रूप से जियो युनटिंग की देखभाल नहीं की, जिसके कारण जियो युनटिंग ने खुद को संयमित करने के कई अवसरों को खो दिया, जो कई अवसरों को खोने के बराबर था। अब जियो युनटिंग स्वर्गीय मूल क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, वह अभी भी केवल दिव्य सागर क्षेत्र 9वें स्वर्ग तीसरे क्षेत्र में था। आधे महीने में वह केवल एक स्वर्ग तक ही पहुंच पाया था। मूल कथानक के अनुसार मेरे दमन के कारण जियाओ युनटिंग ने दो या तीन अच्छी गुप्त तकनीकें प्राप्त की। इन गुप्त तकनीकों पर भरोसा करते हुए उसने आकाश धारण करने वाले संप्रदाय में तबाही मचा दी, धीरे धीरे पूर्वी देव क्षेत्र में अपना नाम बना लिया, और यहां तक कि कुछ युवा प्रतिभाशाली लोग भी जो उसके विरोधी नहीं थे उसके पैरों तले कुचले जा रहे थे। अब मेरे दमन के बिना जियाओ युनटिंग को ये अवसर प्राप्त नहीं होते। अगर वह आकाश धारण करने वाले संप्रदाय में प्रवेश करता है तो वह उन विलक्षण प्रतिभाओं का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और वह उन लोगों के सामने दिखावा और थप्पड़ मारने में सक्षम नहीं हो पाएगा, और बहुत संभव है कि उसे कुछ भी हासिल न हो। फैन चेन अभी भी आकाश धारण संप्रदाय की साजिश के बारे में बहुत स्पष्ट था। अध्याय 7 आकाश धारण कला और यिन यांग दिव्य जल। ये भी आकाश धारण संप्रदाय की यात्रा के कारण था कि जियो युनटिंग तेजी से मजबूत हो गया। अतीत में आकाश धारण करने वाला संप्रदाय पूर्वी देव क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली संप्रदाय था, लेकिन इसने एक शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया जिससे पूरे संप्रदाय का विनाश हो गया। संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र भी गायब हो गया, अब पुनः प्रकट हो रहा है। एक समय शक्तिशाली रहे इस संप्रदाय के विनाश के बाद भी इसके गुप्त क्षेत्र में कई खजाने बचे हुए थे। उदाहरण के लिए आकाश धारण संप्रदाय की आधारभूत साधना तकनीक आकाश धारण कला। ये निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय सेंट ग्रेड खेती तकनीक थी। मूल पुस्तक में जियो युनटिंग ने ये स्काई बेरिंग आर्ट प्राप्त किया था। इससे वह प्रारंभिक अवस्था में अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, तथा अपने क्षेत्र से बाहर के शत्रुओं से लड़ना उसके लिए सामान्य बात थी। ये कहा जा सकता है कि प्रारंभिक दौर में जियो युनटिंग की अजेयता काफी हद तक इस आकाश असर कला से संबंधित थी। कई बार जब उनका सामना शक्तिशाली दुश्मनों से हुआ तो इस आकाश धारण कला ने जियो युनटिंग को खतरे को सुरक्षा में बदलने और विजयी होने में मदद की। उसी समय जियो युनटिंग ने आकाश असर संप्रदाय के भीतर कुछ स्वर्ग और पृथ्वी खजाना भी प्राप्त किया। उनमें से यिन यांग दिव्य जल जैसा कुछ था जिसमें सहज यिन और यांग क्यूई शामिल थे। यदि कोई इसे परिष्कृत कर ले तो वह एक विशेष काया प्राप्त कर सकता है, या तो दिव्य यांग दिव्य शरीर या स्वर्गीय यिन दिव्य शरीर। यद्यपि ये दोनों शारीरिक रचनाएं फोन चेन के दाओ शरीर के बराबर नहीं है, फिर भी वे अत्यंत दुर्लभ शारीरिक रचनाएं हैं जो सामान्य दिव्य शरीरों से बदतर नहीं है। हालांकि यिन यांग दिव्य जल को परिष्कृत करने के लिए एक शर्त को पूरा करना होगा, अर्थात यिन और यांग दोनों को विकसित करना। जियो युनटिंग ने भी लिन लोवेई के दिल को पूरी तरह से खोलने के लिए इस कथानक पर भरोसा किया। इसने बाद के चरणों में जियो युनटिंग के उत्थान के लिए एक ठोस आधार भी तैयार किया। इनके बिना जियाओ युनटिंग आगे चलकर इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। क्या मुझे ढिलाई जारी रखनी चाहिए? फैंग चेन गहरी सोच में पड़ गया। यदि वह इसी तरह काम करता रहा तो बाद में उसे और अधिक पुरस्कार मिल सकते हैं। हालांकि अगर वह ढीला नहीं पड़ा तो वह स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना प्राप्त कर सकता है जो मूल रूप से जियो युनटिंग को साजिश में मिला था। यदि ऐसा हुआ तो बाद में जियाओ युनटिंग के लिए आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जियो युनटिंग एक भाग्यशाली व्यक्ति है, यदि वह इन स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को खो देता है तो वह बाद में और भी बेहतर अवसर प्राप्त कर सकता है। आखिरकार वह पुस्तक में नायक है, नायक हेलो भाग्य द्वारा समर्थित हर चुनौती के साथ मजबूत होता जा रहा है, और दबाव वास्तव में उसे तेजी से बढ़ने में मदद करता है। यदि वह जियो युनटिंग की चीजें छीन लेता है तो इससे भाग्य से मुआवजा मिल सकता है, जिससे जियो युनटिंग को और भी बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो कि शुद्ध नुकसान होगा। चूंकि यही स्थिति है तो मैं आगे भी सुस्ती जारी रखूंगा। ये मामले मेरे काम के नहीं है, बस आराम से लेट जाओ। फैंग चेन ने एक पल सोचा और फिर अपना निर्णय लिया। जब तक वह सुस्त बना रहा और सिस्टम पुरस्कार प्राप्त करता रहा तब तक उसे नहीं पता था कि वे इस यिन यांग दिव्य जल और स्काई बियरिंग आद से कितने बेहतर होंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उनके ढिलाई बरतने से बाद में कथानक भटक जाएगा, यह उनकी चिंता का विषय नहीं था। जल्द ही आकाश धारण करने वाले संप्रदाय के उद्भव ने महाद्वीप पर विभिन्न प्रमुख ताकतों का ध्यान आकर्षित किया। यहां तक कि क्लाउड हेवन होली लैंड जैसी शक्तिशाली संस्थाओं ने भी इस मामले पर चर्चा करने के लिए अपने उच्च स्तरीय सदस्यों को बुलाया। मुख्य शिखर के सेंट हॉल के अंदर महान हॉल में शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए कई आकृतियां खड़ी थीं। ये व्यक्ति क्लाउड हेवन होली लैंड के एल्डर थे और होली लैंड के मुख्य आधार भी थे। उनमें से प्रत्येक के पास संत क्षेत्र या उससे ऊपर की साधना थी, और इस बार पवित्र भूमि के तीसरे एल्डर ने बैठक की अध्यक्षता की। कुछ बुजुर्गों के अलावा आंतरिक संप्रदाय से कुछ विलक्षण लोग भी थे, उदाहरण के लिए फैंग चेन, लिन लोवेई और युवा पीढ़ी के अन्य प्रमुख व्यक्ति। जहां तक फैंग चेन और लिन लोवेई के गुरु युनतियान पवित्र भगवान का सवाल है, वह नहीं आईं। यह मास्टर हमेशा से ही मायावी रहा है, अक्सर क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में मौजूद नहीं होता है। पवित्र भूमि के मामलों की अध्यक्षता एल्डर्स द्वारा की जाती है। तीसरे बुजुर्ग ने शीर्ष पर बैठकर शांति से कहा, अफवाह है कि आकाश धारण करने वाले संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र प्रकट हो गया है। अतीत में जब आकाश धारण करने वाले संप्रदाय का विनाश हुआ था तो उनका गुप्त क्षेत्र भी छिप गया था और उसका सही स्थान किसी को भी ज्ञात नहीं था। अब अज्ञात कारणों से यह अचानक प्रकट हो गया है और इसके भीतर जीवन का पोषण भी हुआ है, साथ ही इसमें बड़ी संख्या में अवसर भी हैं। आज यहां सभी को इकट्ठा करने का उद्देश्य आकाश धारण संप्रदाय के उद्भव पर चर्चा करना है। आकाश धारण करने वाले संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र का अचानक प्रकट होना कुछ अजीब है, शायद इसमें कई खतरे हैं लेकिन इसमें कई अवसर भी हैं। अगर इन खतरों का समाधान किया जा सके तो अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आकाश धारण संप्रदाय की आधारभूत साधना तकनीक आकाश धारण कला इसी गुप्त क्षेत्र में है। संक्षेप में, इस आकाशधारी संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र का अचानक प्रकट होना बहुत ही विचित्र है। इसमें खतरे तो हैं लेकिन अवसर भी हैं। जो लोग जाना चाहते हैं वे सीधे पंजीकरण करा सकते हैं। तीसरे एल्डर के बोलने के बाद संत हॉल जीवंत हो गया। हर कोई आकाश धारण संप्रदाय के उद्भव पर चर्चा कर रहा था। लिन लुओवे, जो पास में था, ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया बल्कि फैंग चेन की दिशा में देखा। फैंग चेन वहां शांति से बेफिक्र होकर बैठा रहा, मानो इस मामले से उसका कोई लेना देना ही न हो। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय गुप्त क्षेत्र में कोई खतरा नहीं है, अंदर मौजूद हर कोई पहले ही मर चुका है। यदि इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती तो स्वर्गीय आकाश संप्रदाय गुप्त क्षेत्र प्रकट नहीं होता, ये लोग इसे कैसे खोज सकते थे। हालांकि इस स्वर्गीय आकाश संप्रदाय गुप्त क्षेत्र में वास्तव में कई अवसर हैं, विशेष रूप से आकाश धारण कला। यह आधारभूत खजाना वास्तव में सबसे छोटी चोटी की खड़ी चट्टान पर छिपा हुआ है। आकाश धारण करने वाले संप्रदाय के लोग सचमुच चालाक हैं, उनकी आधारभूत परम तकनीक वास्तव में सबसे ऊंची चोटी पर नहीं बल्कि सबसे छोटी चोटी पर छिपी हुई है। इसके अलावा यह स्पष्ट सबसे छोटी पर्वत चोटी भी बहुत अजीब है, इसमें वास्तव में यिन यांग दिव्य जल है। ये यिन यांग दिव्य जल ज़ियाओ युमथिंग के उत्थान की कुंजी है। ज़ियाओ युमथिंग और लिन लुओवेई ने यिन यांग दिव्य जल को परिष्कृत किया और अलग अलग दिव्य यांग दिव्य शरीर और स्वर्गीय यिन दिव्य शरीर प्राप्त किया और इसी वजह से लिन लुओवेई ने अपना हृदय खोला। जिसकी बात करें तो ये जियो युमथिंग वास्तव में चालाक है, वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यिन यांग दिव्य जल को परिष्कृत करने के लिए पारस्परिक समलन की आवश्यकता होती है, फिर भी उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं जानने का नाटक किया और लिन लुओवेई को उसके साथ इसे परिष्कृत करने दिया। लिन लुओवेई, वह महिला भी दिमागी रूप से मृत है, उसने वास्तव में यिन यांग दिव्य जल को नहीं पहचाना और मूर्खतापूर्ण तरीके से इसे जियो युमथिंग के साथ परिष्कृत किया। इस प्रकार वह जाल में फंस गई और बिना वापसी के रास्ते पर चल पड़ी। लिन लुओवेई ने फैंग चेन के आंतरिक विचारों को सुनकर अपने दांत पीस लिए। यह आदमी उसे फिर से दिमागी तौर पर मृत कह रहा था और कह रही है कि वह यिन यांग दिव्य जल को नहीं पहचानती। ठीक है, उसने स्वीकार किया, वह वास्तव में यिन यांग दिव्य जल को नहीं पहचानती थी। तो क्या हुआ अगर वह यिन यांग दिव्य जल को नहीं पहचानती? उसने सोचा कि पवित्र भूमि में कितने लोग यिन यांग दिव्य जल को पहचान पाएंगे। क्या ये सामान्य बात नहीं थी कि वह इसे न पहचान पाती? जरा ठहरिए, इस आदमी को आकाशवाहक संप्रदाय के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? वह तो ये भी जानता था कि आकाश धारण संप्रदाय का आधारभूत खजाना आकाश धारण कला कहाँ है। लिन लुओवेई ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और मन ही मन सोचा, अगर उसके अभी के आंतरिक विचार सच थे तो इसका मतलब है कि उसके पिछले आंतरिक विचार भी सच थे। तो सवाल यह है कि फैंग चेन को ये बातें क्यों पता हैं? क्या उसमें भविष्य देखने की क्षमता है? लिन लुओवेई संदेह से भरा था। आकाश धारण करने वाला संप्रदाय प्रकट होने से पहले हजारों वर्षों तक छिपा रहा था, संभवतः किसी को भी नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। तो फिर फैंग चेन को कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें सचमुच भविष्य देखने की क्षमता थी? लिन लुओवेई ने गहरी सांस ली और सोचा, ये सच है या नहीं मुझे आकाश धारण संप्रदाय में जाने के बाद पता चल जाएगा। दरअसल लिन लुओवेई को अब फैंग चेन की बातों पर थोड़ा बहुत यकीन हो गया था। अगर फैंग चेन के मन की बात सुन पाना जैसी अविश्वसनीय बात हो सकती है तो और क्या नामुमकिन था। ये सोचकर लिन लुओवेई की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। अध्याय 8, क्या अब भी शिष्य बदलने में देर नहीं हुई है? अगर फैंग चेन ने जो कहा वह सच था तो क्या अब तक उसके साथ अन्याय हुआ था? वह हत्यारा नहीं था जिसने हमारे लिन परिवार को नष्ट कर दिया, वह मेरा उपकारकर्ता था जिसने मुझे बचाया। इसके अलावा फैंग चेन जानता था कि मैंने उसके साथ गलत किया है, यही कारण था कि वह मुझसे इतना घृणा करता था। ये सोचकर लिन लुओवेई को भी समझ में आ गया कि इस अवधि के दौरान फैंग चेन ने उसे क्यों नजरअंदाज किया था। इस बार लिन लुओवेई ने फोन चेन के आंतरिक विचारों से भारी मात्रा में जानकारी सुनी। यदि फोन चेन ने जो कहा वह सच था तो वह पहले से ही आकाश धारण संप्रदाय में जा सकती थी और आकाश धारण कला और यिन यांग दिव्य जल प्राप्त कर सकती थी। विशेष रूप से यिन यांग दिव्य जल, जब तक वह इसे परिष्कृत करती, वह स्वर्गीय यिन दिव्य शरीर प्राप्त कर सकती थी, जो एक शीर्ष स्तरीय काया थी। यद्यपि इसकी तुलना फैंग चेन के जन्मजात दाओ शरीर से नहीं की जा सकती, फिर भी यह उसे बहुत अधिक बढ़ा सकता है और उसकी अपनी कमियों की भरपाई कर सकता है। लिन लोवेई की प्रतिभा खराब नहीं थी, लेकिन वह शीर्ष स्तर की भी नहीं थी। कम से कम वह विशेष शारीरिक बनावट वाले उन प्रतिभाशाली लोगों से तुलना नहीं कर सकती थी। यदि उसके पास स्वर्गीय यिन दिव्य शरीर होता तो वह अपने और उन शीर्ष स्तरीय विलक्षण व्यक्तियों के बीच के अंतर को बहुत कम कर सकती थी। यह एहसास होने पर लिन लोवेई को उत्साह की लहर महसूस हुई और वह तुरंत स्काई बियरिंग संप्रदाय की ओर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसी समय तीसरे बुजुर्ग ने फोंग चेन की ओर देखा और पूछा, महामहिम संत, क्या आप प्रशिक्षण के लिए आकाश धारण संप्रदाय में जा रहे हैं? नहीं, फोंग चेन ने संक्षेप में उत्तर दिया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कई लोगों ने राहत की सांस ली। यदि फैंग चेन चले गए तो वे कई अवसर खो देंगे। आखिरकार महामहिम संत की उपस्थिति में अधिकांश अवसर महामहिम संत द्वारा ही प्राप्त किए जाएंगे। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? लिन लोवेई संदेह से भरा था। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, फैंग चेन को स्पष्ट रूप से पता था कि आकाश धारण करने वाले संप्रदाय में दो सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने कहाँ हैं। वह उन्हें वापस क्यों नहीं ले आता? ये सही है, फैंग चेन के लिए ये बस उन्हें ले जा रहा था। यदि आप संत भी होते तो भी ऐसा अवसर अत्यंत दुर्लभ था। वहां जाने की क्या बात है? स्वर्गीय आकाश संप्रदाय गुप्त क्षेत्र में कई अवसर प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वहां बहुत सी अच्छी चीजें नहीं हैं और वे मेरे किसी काम की नहीं हैं। फैंग चेन ने मन ही मन शिकायत की। लिन लोवेई, जो फैंग चेन के आंतरिक विचारों को सुन सकता था, पूरी तरह से अवाक था। तो इस आदमी ने इन अवसरों को तुच्छ समझा। ये बात सही थी, आखिरकार वह एक संत थे। यद्यपि आकाश धारण कला अच्छी थी, लेकिन मेघस्वर पवित्र भूमि में उसी स्तर की कई साधना तकनीकें थी, इसलिए उसके लिए इसे तुच्छ समझना सामान्य बात थी। और यिन यांग दिव्य जल, उसके पास तो पहले से ही एक जन्मजात दाव शारीरिक बनावट थी, तो उसे आपके यिन यांग दिव्य जल की क्या जरूरत होगी? भले ही आप दिव्य यांग दिव्य शरीर या स्वर्गीय यिन दिव्य शरीर तक चढ़ गए हों, फिर भी इसकी तुलना उनके जन्मजात दाव शरीर से नहीं की जा सकती। यह अच्छी बात है कि यह आदमी उन्हें नीची नजर से देखता है, इसलिए कोई भी मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं आकाश धारण करने वाली कला और यिन यांग दिव्य जल अपने लिए ले लूंगा। लिन लोवेई ने मन ही मन एक निर्णय लिया। क्लाउड हेवन होली लैंड की ओर से स्वर्गीय फर्मेन संप्रदाय गुप्त क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों का शीघ्र ही निर्धारण कर लिया गया। ये लोग भी जल्दी से क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के मुख्य द्वार पर एकत्र हुए और फिर स्वर्गीय फर्मेन संप्रदाय गुप्त क्षेत्र की ओर बढ़ गए। आखिरकार ऐसे मामलों में जल्दबाजी की आवश्यकता होती है, यदि आप धीमे होंगे तो शायद वे अवसर दूसरे लोग छीन लेंगे। ज़ियाओ युनटिंग ने भी स्काई बियरिंग सेक्ट की इस यात्रा के लिए नामांकन कराया और उनका चयन किया गया। फैंग चेन के दमन के बिना जियो युनटिंग अभी भी क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में अज्ञात था। हालांकि उन्हें लिन लोवेई द्वारा पेश किया गया था और शायद लिन लोवेई के चेहरे के सम्मान के कारण जियो युनटिंग को चुना गया था। चाहे जो भी हो, लिन लोवेई पवित्र प्रभु की पसंदीदा शिष्या थी और पवित्र भूमि में उसकी स्थिति कम नहीं थी। पवित्र भूमि के लोगों को लिन लोवेई को कुछ हद तक सम्मान देना पड़ा। उड़ते हुए जहाज पर स्वर्गीय फर्मेन संप्रदाय गुप्त क्षेत्र की ओर जा रहा हूँ, जियो युनटिंग ने बाईं और दाईं ओर देखा, मानो किसी को खोज रही हो। जल्द ही उसने कुछ ही दूरी पर एक सुंदर आकृति देखी और दौड़कर उसके पास गया। वरिष्ठ बहन लिन, जियो युनटिंग ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। लिन लोवेई क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में उसका एकमात्र सहारा थी और लिन लोवेई के प्रति अपने स्नेह के साथ वह उसे जीतने का सपना देखता था। बच्चे, तुम सचमुच साहसी हो। क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि बादलों का स्वर्ग का पवित्र पुत्र तुम्हारे प्रति द्वेष रखेगा? बूढ़े मिंग ने असहायता के भाव से कहा। अभिमानी ज़ियाओ युनटिंग के विपरीत ओल्ड मिंग एक पुराना राक्षस था जो अनगिनत वर्षों से जीवित था और मानव स्वभाव के बारे में बेहद स्पष्ट था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से समझ लिया था कि सावधानी का ताओ सभी ताओ में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई सावधानी के ताओ को समझ ले तो दुनिया में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बनना केवल समय की बात है। इस स्तर पर किसी को उन शत्रुओं को बिल्कुल भी नहीं उकसाना चाहिए जिन्हें उकसाया नहीं जाना चाहिए, विशेष रूप से क्लाउड हेवन होली लैंड के संत जैसे अस्तित्व को। एक बार उकसाए जाने पर परिणाम अत्यंत गंभीर होंगे। यदि कोई और होता तो ये जानते हुए कि संत लिन लोवेई से बहुत प्यार करते थे, वे अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए लिन लोवेई से बचते। फिर भी इस व्यक्ति ने चुनौती का सीधे सामना करने पर जोर दिया। गुरुजी, मुझे किस बात का डर है? अब मैं भी मेघस्वर पवित्र भूमि का एक शिष्य हूँ। भले ही संत का दर्जा ऊंचा हो, वह इस तरह के मामले में मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। क्लाउड हेवन होली लैंड के नियम केवल दिखावे के लिए नहीं है। जियो युन्टिंग ने उदासीनता से कहा। भले ही संत उससे बहुत नाराज थे, फिर भी वह पवित्र भूमि के नियमों को नहीं तोड़ सकता था। जब तक वह पवित्र भूमि के हितों का उल्लंघन करने वाला कुछ भी नहीं करता, तब तक वह पवित्र भूमि के किसी शिष्य के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता था। अगर वह आपके साथ सौदा करना चाहता है तो उसे खुद ऐसा करने की क्या जरूरत है। बूढ़ा मिंग पूरी तरह से हताश था। जियो युन्टिंग बहुत घमंडी और आत्म महत्वपूर्ण था। फैंग चेन जैसी स्थिति वाले किसी व्यक्ति को एक को छोड़कर बाकी सभी से ऊपर कहा जा सकता है, उसे व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की आवश्यकता क्यों होगी। उसे एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं होगी, उसके नीचे के लोग उसकी ओर से कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा फैंग चेन जैसे लोग ही नियम निर्धारित करते थे, न कि उनका पालन करते थे। ये बात मुझे और भी अच्छी लगती है। अगर उनके अधीन लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करते हैं तो वे मेरी सफलता की राह में रोड़ा बन जाएंगे। जियो युन्टिंग ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा। ओल्ड मिंग, क्या यह आदमी अति आत्मविश्वासी है? क्या अब भी शिष्यों को बदलने में बहुत देर नहीं हो गई है? लिन लोवेई ने जियो युन्टिंग की ओर देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह क्या है? जितना अधिक वह समझती गई उतना ही अधिक वह जियो युन्टिंग को नापसंद करने लगी। अब ये घृणा के बिंदु तक भी पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि जियो युन्टिंग को लिन लोवेई की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और उसने कुछ अजीब तरीके से कहा, वरिष्ठ बहन लिन, क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में मेरा कोई परिचित नहीं है, इसलिए मैं विशेष रूप से आपका अभिवादन करने आई हूँ। इसके अलावा सीनियर सिस्टर लिन ने मुझे पवित्र भूमि से परिचित कराया था। इस बार ये देखते हुए कि आप भी आकाश धारण संप्रदाय की यात्रा पर जा रहे हैं, मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देने आया हूँ। जियो युन्टिंग लिन लोवेई के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था। आखिरकार क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में लिन लोवेई की स्थिति कम नहीं थी और उन्हें एक महत्वपूर्ण समर्थन माना जा सकता था। इस समय लिन लोवेई का अभिवादन करने से पवित्र भूमि के अन्य शिष्यों को भी पता चल जाएगा कि लिन लोवेई के साथ उनका रिश्ता उथला नहीं था। इस तरह पवित्र भूमि में उनकी स्थिति में काफी सुधार हो सकता था। हम करीब नहीं हैं, लिन लोवेई ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने ये कहा, चारों ओर की निगाहें तुरंत आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने सोचा था कि जियो युन्टिंग और लिन लोवेई के बीच घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन लोवेई जियो युन्टिंग के प्रति इतना ठंडा होगा। कई लोग चुपके से हंसने लगे। इस समय वे समझ गए कि लिन लोवेई ने केवल अपनी अच्छी प्रतिभा के कारण जियो युन्टिंग को पवित्र भूमि में पेश किया था और कोई अन्य कारण नहीं था। ये जियो युन्टिंग अभी भी मेंढक की तरह हंस का मांस खाना चाहता था, वास्तव में उसे अपनी जगह का पता नहीं था। इस समय जियो युन्टिंग भी बेहद शर्मिंदा थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास के सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हों। हालांकि वह गलत नहीं था, उसके आसपास के लोगों के चेहरे पर सचमुच उपहासपूर्ण भाव थे। ठीक है, जियाओ युन्टिंग ने संयम का दिखावा किया, अजीब तरीके से कहा और फिर जाने के लिए मुड़ गया। अध्याय 9, तलवारों का सम्राट, तलवार 5 सम्राट। जियो युन्टिंग के जाने के बाद इन शिष्यों ने भी चर्चा शुरू कर दी। मैं सोचता था कि जियो युन्टिंग का सीनियर सिस्टर लिन के साथ गहरा रिश्ता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा होगा। हे हे, एक मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। क्या इस आदमी को नहीं पता कि संत महाराज सीनियर सिस्टर लिन को पसंद करते हैं? वह फिर भी गया और अब उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर लिन ने केवल जियाओ युन्टिंग को पवित्र भूमि में प्रवेश देने की सिफारिश की थी क्योंकि वह उसकी प्रतिभा को महत्व देती थी और कुछ नहीं। यह आदमी, संत महाराज इसकी परवाह भी नहीं करता, उसे अपना बचाव स्वयं करने दीजिए। संत महाराज ऐसी चींटी से कैसे परेशान हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि संत महाराज भी आपकी तरह संकीर्ण सोच वाले हैं? ये शिष्य आपस में फुसफुसा रहे थे। अगर फैंग चेन ये शब्द सुनने के लिए यहाँ होते तो कौन जानता कि वह क्या सोचते। वह निश्चित रूप से कहेंगे, आप सबने गलत समझा है, मैं खुले विचारों वाला नहीं हूँ, मैंने तो बस हार मान ली है। मैंने तुम्हें अभी याद दिलाया था कि लिन लोवेई को उकसाना नहीं है, अब तो तुम्हें नजरअंदाज कर दिया गया है न? बूढ़े मिंग ने अवाक भाव से कहा। ये शिष्य हर पहलू में औसत दर्जे का था, लेकिन वह असाधारण रूप से अभिमानी और अहंकारी था। बूढ़े मिंग को लगा कि लिन लोवेई ने जो कहा वह बिल्कुल ठीक था। आखिरकार दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था और जियो युन्टिंग ने लिन लोवेई की किसी भी चीज में मदद नहीं की थी। उस समय जियो युन्टिंग ने उसे बचाने के लिए कदम उठाया, उसने वास्तव में लिन लोवेई की मदद नहीं की। भले ही जियो युन्टिंग ने कार्रवाई नहीं की होती, वह आसानी से संकट को स्वयं हल कर सकती थी। इसके अलावा लिन लोवेई एक अच्छा व्यक्ति था। जियो युन्टिंग द्वारा उसे बचाने के प्रयास के प्रति कृतज्ञता से उसने विशेष रूप से उसे क्लाउड हेवन होली लैंड में शामिल होने की सिफारिश की। ये पुनर्तः एक उपकार था। ये जियो युन्टिंग ही थी जिसने लिन लोवेई का एहसान माना था। वह ये भी बता सकता था कि लिन लोवेई स्पष्ट रूप से जियो युन्टिंग के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। ज़ियाओ युनटिंग में आत्म जागरूकता का अभाव था, फिर भी वह करीब आने पर अड़ा रहा, इसलिए ये परिणाम स्वाभाविक ही था। नहीं गुरुजी, मुझे विश्वास है, मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर लिन मेरी रक्षा कर रही हैं। मैं अभी बहुत गुस्से में थी, सोच रही थी कि सीनियर सिस्टर लिन ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, लेकिन जब मैं शांत हुई तो मुझे समझ आ गया। शायद सीनियर सिस्टर लिन को चिंता थी कि अगर मैं उनके बहुत करीब आ गई तो यह फैंग चेन को नाराज कर देगा, जिसके कारण वह मुझसे बदला लेगा। मास्टर, आपने सीनियर सिस्टर लिन को गलत समझा और मैंने भी उन्हें गलत समझा, उन्होंने ऐसा मेरी रक्षा के लिए किया, जियो युनटिंग ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। तुरंत ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देने लगा। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ देख लिया है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। ओल्ड मिंग, स्पीचलेस की माँ ने स्पीचलेस के लिए दरवाजा खोला, ये पूरी तरह से अवाक था। ज़ियाओ युनटिंग के विचार इतने नवीन कैसे हो सकते हैं? यह अब केवल अहंकार नहीं था, यह आत्मधोखा था। उस स्थिति में थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति लिन लोवेई की अधीरता को भांप सकता था। वह ऐसी दिख रही थी मानो वह चाहती हो कि वह ज़ियाओ युनटिंग को लात मारकर दूर कर दे। शायद मुझे सचमुच इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या मुझे कोई दूसरा शिष्य ढूंढना चाहिए। आत्म महत्वपूर्ण ज़ियाओ युनटिंग को देखकर बूढ़े मिंग ने महसूस किया कि उसके भौतिक शरीर को फिर से आकार देने की उसकी उम्मीद बहुत कम थी। प्रतिभा की कमी कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक आप लगन से अभ्यास करते हैं और हर अवसर को प्राप्त करते हैं, आप इस दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन ज़ियाओ युनटिंग, काश मैं कोई दूसरा विकल्प चुन पाता। वह फैंग चेन सचमुच उत्कृष्ट है, वह क्लाउड हेवन होली लैंड का संत है, जिसके पास महान प्रतिभा, मजबूत पृष्ठभूमि और उच्च साधना है, फिर भी वह व्यवहारिक और विनम्र है। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय गुप्त क्षेत्र की यात्रा के लिए दिखावा करने का ऐसा मौका, क्या वह आया? वह नहीं आया, इसके बजाय वह चुपचाप पवित्र भूमि के भीतर साधना कर रहा है। जितना अधिक ओल्ड मिंग इसके बारे में सोचता था, उतना ही वह इस शिष्य से असंतुष्ट हो जाता था और अंत में वह केवल आहें भर सकता था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, वह अपनी सारी उम्मीदें केवल ज़ियाओ युनटिंग पर ही लगा सकता था। यदि उसके पास कोई विकल्प होता तो वह कभी भी ज़ियाओ युनटिंग को नहीं चुनता, भले ही वह फोन चेन को नहीं चुन सकता, लिन लोवेई को चुनना भी अच्छा होगा। गुरुजी, क्या आपको लगता है कि मैंने जो कहा वह सही है? हाँ, बूढ़े मिंग ने कमजोरी से कहा। वह थका हुआ था, उसका दिल बहुत थक गया था और वह गहरी नींद में सो जाना चाहता था। तियानक्विंग पर्वत श्रृंखला, उस समय तियानकिंग के पुराने पूर्वज ने इस पर्वत श्रृंखला में संप्रदाय की स्थापना की और इसे स्काई बियरिंग संप्रदाय नाम दिया। यद्यपि स्काई बियरिंग सेक्ट नष्ट हो गया था, ये पर्वत श्रृंखला अभी भी मौजूद है और इसे अभी भी तियानकिंग पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। अतीत में तियानकिंग पर्वत श्रृंखला हजारों मील तक उजाड़ थी, लेकिन अब लोग आते जाते रहते हैं और अनगिनत लोगों को इकट्ठा करते हैं। ये लोग स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय फर्मेन संप्रदाय गुप्त क्षेत्र के उद्भव के कारण आए थे। स्वर्गीय फर्मामैन संप्रदाय गुप्त क्षेत्र अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न बल पहले से ही तियानकिंग पर्वत श्रृंखला पर एकत्र हो गए हैं। यद्यपि क्लाउड हेवन होली लैंड से लोग काफी पहले ही आ गए थे, फिर भी इस समय तक बहुत से लोग यहां एकत्र हो चुके थे। एक जोरदार आवाज गूंजी, क्लाउड हेवन होली लैंड का उड़ता जहाज तियानकिंग पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश में रुक गया और शक्तिशाली दबाव ने चारों ओर के सभी लोगों को देखने पर मजबूर कर दिया। बादल स्वर पवित्र भूमि के लोग यहाँ हैं। क्लाउड हेवन होली लैंड की गतिविधियां वास्तव में बहुत तेज हैं, वे बहुत दूर से दौड़कर आए हैं। वास्तव में क्या आपने वह उड़ने वाला जहाज नहीं देखा जिस पर वे सवार हैं? वह एक सेंट ग्रेड उड़ने वाला जहाज है और जो उड़ते हुए जहाज पर खड़ा है वह क्लाउड हेवन होली लैंड का पांचवां एल्ड होना चाहिए। यह अफवाह है कि वह पहले ही नौवें संत दायरे में प्रवेश कर चुका है। ये वास्तव में वह तलवार परी है जिसने सैकड़ों साल पहले एक तलवार से कई ऋषियों को मार डाला था। उनका नाम तलवार पांच सम्राट यूं ही नहीं है, वे अपने नाम के अनुरूप ही जीते हैं। एक तलवार से 90,000 मील की दूरी तय करते हैं, तलवारों के सम्राट। यहां तक कि इतनी दूर से भी मैं एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार की मंशा महसूस कर सकता हूं, जैसे कि यह मुझे चीर देगी। आपकी साधना क्या है? तलवार पांच सम्राट की साधना क्या है? यहां तक कि एक सम्राट क्षेत्र भी आपको मौत के घाट उतार देगा। यह अच्छी बात है कि हम दूर हैं, अन्यथा वह जो तलवार का इरादा उत्सर्जित करता है वह हमें सीधे मार सकता था। क्लाउड हेवन होली लैंड के लोगों की उपस्थिति ने तुरंत ही अनगिनत दर्शकों को आकर्षित किया, लेकिन वे केवल दूर से ही देख सकते थे। स्पष्टतः सबसे अधिक ध्यान तलवार पांच सम्राट पर था। उसके अलावा वहां एक और व्यक्ति था। क्या वह बर्फ परी लिन लोवेई है? वास्तव में उसके पास स्वर्गीय अमर की सुंदरता है, फिर भी उसका स्वभाव एक हिमखंड जैसा है जो लोगों को उनके रास्ते में ही रोक देता है। बर्फीली परी हमेशा की तरह बिल्कुल अपरिवर्तित है। ऐसी औरत किसी पुरुष को कैसे पा सकती है? एक नाजुक आवाज गूंजी, मानो उसमें जादू हो, जिससे किसी की क्यूई और रक्त में उछाल आ गया। ये सुनकर लिन लो भी अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी अभिव्यक्ति घृणा से भरी हुई थी। फिर उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो उसे एक सुंदर फूलों वाली नाव दिखाई दी, जिस पर एक नाजुक महिला खड़ी थी। महिला ने काले रंग की पोशाक पहनी थी, उसके नए नक्श बेहद खूबसूरत थे और उसकी त्वचा गोरी थी, जिसमें कोई दोष नहीं था। इसके अलावा उसका पूरा शरीर धुंधली चमक से ढका हुआ था, मानो सफेद जैद का एक चमकीला टुकड़ा हो। यदि लिन लोवेई की तुलना तियान शान बर्फ कमल से की जाती है तो यह महिला एक जीवंत फूल थी। दोनों ही शीर्ष स्तर की सुंदरियां थीं, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग थे। हुआ मिंगइंग, क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके मूनलाइट हॉल की महिलाओं की तरह है, जो अपनी दिव्य आत्मा से पुरुषों को आकर्षित करती हैं? लिन लोवेई ने बिना विनम्रता के कहा। अध्याय 10, आकाश धारण करने वाले संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र खुलता है, बाहर से अवरुद्ध। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। ये हमारे मूनलाइट हॉल शिष्यों के लिए सम्मान की बात है कि आप ऐसा महसूस करते हैं। हुआ मिंगिंग का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था, फूल की तरह खिल रहा था। वह मूनलाइट हॉल की इस पीढ़ी की संत थी और अपने मनमोहक आकर्षण के लिए जानी जाती थी। मूनलाइट हॉल अन्य संप्रदायों से बिल्कुल अलग था। अन्य संप्रदाय तप करते थे और महान दाव को समझते थे, हालांकि मूनलाइट हॉल ने यिन और यांग मिलन के दाव को समझ लिया। मूनलाइट हॉल के अधिकांश शिष्य इस दाव में निपुण थे। ये लोग कुशल और अनुभवी थे। इस संबंध में वे महान गुरु स्तर के अस्तित्व के बराबर थे। शायद अन्य लोगों को मूनलाइट हॉल के शिष्यों की यह गतिविधि अशिष्ट और अनुचित लगी होगी, लेकिन मूनलाइट हॉल के शिष्यों को इसमें शर्म महसूस नहीं हुई, बल्कि उन्हें इसमें गर्व महसूस हुआ। हे, हुआ मिंगिंग ने चांदी की घंटी जैसी हंसी निकाली और लिन लोवेई को देखते हुए कहा, लिन जियान जी, आपको क्या हुआ है? क्या आप बीमार हैं? आप इतने पीले क्यों देख रहे हैं? और हाँ, तुम्हारे संत कहाँ हैं? तुम दोनों तो हमेशा से अभिन्न लगते थे। अब जब तुम्हारे संत तुम्हारे साथ नहीं है, तो क्या यह अफवाह सच है? क्या तुम्हारे संत अब तुम्हें पसंद नहीं करते? ओह, मेरी गलती, मुझे अब उसे आपका संत नहीं कहना चाहिए। बहुत संभव है कि वह मेरा संत हो। मैं आपके बारे में क्या कह सकता हूँ? ये सचमुच दुख की बात है। आपने अपने संत जैसे समर्पित व्यक्ति के साथ अवसर का लाभ नहीं उठाया। अगर आपके संत मुझ पर इतने समर्पित होते तो मैं बहुत पहले ही मान गया होता। शायद हमारे बच्चे पहले ही हर जगह दौड़ भाग कर रहे होते। ये खबर फैल गई थी कि फैंग चेन अब लिन लोवेई का पीछा नहीं कर रहा है। फैंग चेन ने इस मामले पर अपना रुख नहीं बताया था और क्लाउड हेवन होली लैंड के लोगों ने केवल अनुमान लगाया कि शायद महामहिम संत बंद दरवाजे के पीछे साधना में थे और उनके पास समय नहीं था। पवित्र भूमि के लोगों ने इसे अफवाह समझा। आखिरकार संत को पहले भी लिन लोवेई से बहुत लगाव था, वह उसे छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन अब हुआ मिंगिंग द्वारा ये बात सामने लाने से क्लाउड हेवन होली लैंड के लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए और वे लिन लोवेई को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। न केवल वे उत्सुक थे, बल्कि अन्य बलों के लोग भी बहुत उत्सुक थे और सभी लिन लोवेई को देख रहे थे। आखिरकार लोगों को हमेशा गपशप पसंद आती है। यहां तक कि खेती की दुनिया के प्रतिभाशाली लोग भी ऐसी गपशप का आनंद लेते थे। फैंग चेन पूर्वी देव डोमेन का एक अद्वितीय कौतुक था और वह इतने सालों से लिन लोवेई के प्रति समर्पित था, लगातार उसका पीछा कर रहा था, फिर भी उसे हमेशा लिन लोवेई द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित किया। वह एक संत थे जिनके पास पृष्ठभूमि और प्रतिभा दोनों थी। उसकी अपनी छोटी बहन लिन लोवेई को पाने की कोशिश वास्तव में विफल हो गई थी। ये ज्ञात था कि लिन लोवेई के बारे में अफवाह थी कि उसे कोई पसंद नहीं था। ऐसी स्थिति में उनकी असफलता ने सभी को उत्सुक क्यों नहीं किया? इसके अलावा क्या हाल की अफवाहें सच थी या नहीं? क्या फैंग चेन ने सचमुच ही प्रयास करना छोड़ दिया था? इससे तुम्हारा क्या संबंध है? लिन लोवेई ने हुआ मिंगिंग को घूर कर देखा। चांदनी हॉल की यह संत सचमुच परेशान करने वाली थी। अपने उत्थान के बाद से ही उन्हें और हुआ मिंगिंग को युवा पीढ़ी के बीच अद्वितीय जुड़वां फूल कहा जाता था। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं जो समान रूप से मेल खाती थीं। लिन लोवेई ने हमेशा हुआ मिंगिंग को नजरअंदाज किया था, लेकिन ये हुआ मिंगिंग हमेशा उसके साथ झगड़ा करती रही थी। जब भी वह इस महिला से मिलती तो उसे ढूंढ कर तीखी टिप्पणियां जरूर करती। इससे लिन लोवेई बेहद चिढ़ गया। किसने कहा कि यह अप्रासंगिक है? बेशक ये प्रासंगिक है। यदि आपके संत उस समय इतने समर्पित नहीं होते तो मुझे, हुआ मिंगिंग को, एक अवसर मिलता। हुआ मिंगिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, हुआ मिंगिंग, भले ही आपके पास हिम्मत हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके मूनलाइट हॉल में भी हिम्मत है। लिन लोवेई ने व्यंग्य किया। यदि मूनलाइट हॉल फैंग चेन पर कोई कदम उठाना चाहता था, भले ही फैंग चेन तैयार था, क्लाउड हेवन होली लैंड सहमत नहीं होगा और मूनलाइट हॉल में हिम्मत भी नहीं थी। फैंग चेन बादलों के स्वर्ग की पवित्र भूमि का संत था और उससे बहुत उम्मीदें थीं। अगर हुआ मेंगिंग ने सचमुच ऐसा करने की हिम्मत की तो बादलों के स्वर्ग की पवित्र भूमि सीधे मूनलाइट हॉल को नष्ट कर देगी। भले ही मूनलाइट हॉल की ताकत कमजोर नहीं थी, क्लाउड हेवन होली लैंड की नज़र में यह अभी भी कुछ नहीं था। मुझे किस बात का डर है, मैं तो बस आपके संत से कह रहा हूं कि वे मेरे दाव साथी बने, मेरे कड़ाई नहीं। इसके अलावा मैं बहुत पवित्र हूं। अगर आपके क्लाउड हेवन होली लैंड को पता चल गया तो मुझे नहीं लगता कि वे कुछ कहेंगे, हुआ मिंगलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हे तुम शुद्ध हो, लिन लोवे ने व्यंग्य किया। मूनलाइट हॉल की संत ने वास्तव में ऐसे शब्द कहने का साहस किया, ये सरासर हास्यास्पद था। यह ऐसा था जैसे कोई वेश्या स्वयं को शुद्ध और कुंवारी होने का दावा कर रही हो, कौन इस पर विश्वास करेगा। आकाश धारण करने वाले संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। ये देखकर कि दोनों अभी भी बहस कर रहे थे, पांचवें बड़े तलवार पांचवें सम्राट बोले। उन्होंने इन कनिष्ठों के मामलों में हस्तक्षेप करना अनुचित समझा, लेकिन चूंकि इसमें संत फोनचेन और क्लाउड हेवन पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा शामिल थी, इसलिए तलवार पांच सम्राट को कुछ कहना पड़ा। मुख्य रूप से लिन लोवे स्पष्ट रूप से हुआ मेंगिंग के खिलाफ बहस नहीं जीत सकते थे, और अगर यह जारी रहा तो लिन लोवे को निश्चित रूप से नुकसान होगा। उनके शब्दों पर विभिन्न शक्तियों की निगाहें पहाड़ों की चोटियों पर पड़ गईं। अगले ही क्षण एक गड़गड़ाहट सी आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश फट गया हो, और फिर आकाश में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। प्रकाश के भीतर एक मार्ग था, और उसके भीतर मंडप और मीनारें दिखाई दे रही थीं, साथ ही शुभ संकेत भी उड़ रहे थे, मानो कोई परिलोक हो। शायद इसलिए कि अंदर कोई नहीं था, विशाल क्षेत्र कुछ हद तक जीर्ण शीर्ण दिखाई दे रहा था। जैसे ही मार्ग दिखाई दिया, विभिन्न शक्तियां भी कार्य करने लगी। जाना, तलवार पांच सम्राट के आदेश के साथ क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के शिष्य एक के बाद एक बाहर चले गए। लिन लोवेई ने तुरंत कार्रवाई की, उड़ान भरी और सीधे गुप्त क्षेत्र मार्ग की ओर बढ़ गया। मुझे धक्का मत दो, जियो युनटिंग ने मार्ग की ओर उड़ने के लिए संघर्ष किया। वह गुप्त क्षेत्र में तेजी से प्रवेश करना चाहता था, लेकिन उसकी कम साधना के कारण उसे कई बार पीछे धकेल दिया गया। सब रुक जाओ, अचानक कई लोगों ने मार्ग के बाहरी हिस्से को अवरुद्ध कर दिया, जिससे ये लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सके। ये पांचों व्यक्ति चौथे क्षेत्र स्वर्गीय मूल क्षेत्र में थे, और वे सभी स्वर्गीय मूल क्षेत्र के पांचवें स्वर्ग से ऊपर थे। यदि आप आकाश धारण संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो पहले हमें पराजित करें, एक आदमी ने उपहास किया। लिताई, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो, अवरुद्ध भीड़ गुस्से में दहाड़ने लगी। बहुत से लोग आकाश धारण संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। क्या होगा यदि वे एक कदम देर से प्रवेश करें और अंदर के सभी अवसर दूसरों द्वारा छीन लिए जाएं? त्यानई गेट सचमुच प्रभावशाली है, जिसने हम में से कई लोगों को रोकने का साहस किया। त्यानई गेट के पांच नायक, ये पांचों पंचक हैं, उनके दिमाग जुड़े हुए हैं और उनकी संयुक्त शक्ति असाधारण है। धिक्कार है, ये पांच लोग हमारा रास्ता रोक रहे हैं, हमें गुप्त क्षेत्र में तुरंत प्रवेश करने से रोक रहे हैं। अगर हम देर से अंदर गए तो अंदर के सभी अवसर वे लोग छीन लेंगे। बाहर रोके गए लोग बहुत क्रोधित थे, वे केवल दूसरों को अंदर आते हुए देख पा रहे थे, जबकि वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ये पांच नायक मूर्ख नहीं थे और जनता के क्रोध के परिणामों को समझते थे, इसलिए उन्होंने केवल उन लोगों को रोका जो उनसे कमजोर थे। उनसे अधिक शक्तिशाली लोगों को सीधे प्रवेश की अनुमति दी गई। दरअसल मूल कथानक में त्यानई गेट के पांच नायकों ने गुप्त क्षेत्र के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, और जियो युनटिंग ने उग्र रूप से हमला किया, सीधे त्यानई गेट के पांच नायकों को हराया, जिससे अन्य लोग प्रवेश कर सके। इस लड़ाई में जियो युनटिंग ने भी अपना नाम बनाया। ये सिर्फ इतना है कि मूल कथानक में जियो युनटिंग शक्तिशाली था, यहां तक कि अभी तक उच्च साधना के साथ भी वह आसानी से त्यानई गेट के पांच नायकों को हरा सकता था। लेकिन अब जियो युनटिंग को फैनचेन द्वारा दबाया नहीं गया था, जिसके कारण उसने कई विकास के अवसर खो दिए और उसकी ताकत स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। वर्तमान में वह चौथे क्षेत्र स्वर्गीय मूल क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा है, वह तीसरे क्षेत्र दिव्य सागर क्षेत्र के नौवें स्वर्ग में है। भाड़ में जाओ, जियो युनटिंग ने गुस्से में दहाड़ते हुए हमला किया।